आपका बहुत धन्यवाद भाई नवीन। सुप्रभात दोस्तों, मैं आज सुबह बिस्तर पर चला गया जिससे मैं फिर से उठूं। सो मैं थोड़ा सा थका हुआ था, नहीं मैं यहाँ पर आने की अपेक्षा में नहीं था। भाई शिकेरियन जो फुल गॉस्पल बिजनेसमैन हैं, वो इस गतिविधि के प्रेसिडेंट हैं। उनकी पत्नी बहुत बीमार थी और उसे अस्पताल ले जाया गया था, और इस तरह अचानक से एक मनुष्य को उनके स्थान पर रखना था इस तरह के बड़े काम के लिए, और कल के कन्वेंशन को संभालना था। और भाई अर्गन ब्राइड आए और हम वहाँ पर गए, और कल सुबह मैं 4 बजे उठा और हमें सिनसिनेटी के लिए निकलना था, और हमारा सारा दिन निकल गया। हम लगभग इस सुबह उजाले में पहुंच गए, और यह इस तरह से होता गया, मेरा गला बैठ गया, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हम यहाँ पर हैं। मैं सोचता हूँ भाई अर्गम ब्राइट ने इसे कर दिखाया। क्या आप यहाँ पर हैं भाई अर्गम ब्राइट? वो अब भी मॉर्फियस की बाहों में अवश्य ही सुरक्षित होगा। आप नहीं जानते मॉर्फियस कौन था? एक रोमन मूर्ति पूजकों का परमेश्वर, स्वप्न का परमेश्वर। इसलिए आप थोड़ा मेरे साथ बर्दाश्त करना। आज की सुबह मेरा गला खराब हो गया है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा समय तक नहीं रोके रखूं। आज की सुबह मेरा इस सभा को करने का उद्देश्य यह था, लोगों की वजह से नहीं। अगले रविवार मैं मेरे क्रिसमस के संदेश को देने जा रहा था, यदि मैं देता था तो। तब इससे शहर के बाहर के लोग आने लगते हैं, इससे उनके क्रिसमस में बाधा आती है, आप जानते हैं, वापस जाने पर। और इसलिए मैंने सोचा यह बहुत ही अच्छा होगा, हम एक साथ इकट्ठा होते हैं और आज सुबह परमेश्वर की आराधना करते हैं इस तरह से, क्रिसमस सभा का जो मेरा भाग है। और फिर अगले रविवार आप, यदि आप दूर रहते हैं, आप अपनी खुद की कलीसिया में हो सकते हैं, आप जहां कहीं से भी हो या कुछ भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और मैं आज की सुबह मैं उस सुंदर गीत के लिए भाई का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तभी अंदर आया जब इसे गाया गया था, जो वास्तव में बहुत ही अच्छा था, और हर समय मैंने अपनी पत्नी से सुना है, और वे सारे भाई के गीत के गाने की सराहना करते हैं, और यहाँ भवन से दूर उसे गीत गाते हुए सुनने के लिए यह मेरा खुद का पहला मौका था। अब क्या ये कोई बात नहीं है? हमारा भाई यहाँ भवन से है, और मुझे एकदम से चिवरीपोर्ट लुइसियाना जाना पड़ा कि उसे पहली बार गाते हुए सुनूं। कैसी अजीब सी बात है, क्या ये नहीं है? और फिर मैंने सोचा ऐसा करने से इससे हमें एक समय मिलेगा एक साथ इकट्ठा होने के लिए, और फिर से रास्ते बहुत ही खराब थे। मैं सोच रहा था क्या भाई और बहन डॉज ओहियो से पहुंच पाएंगे, क्या वे आगे हैं? जी हाँ हाँ, मैं भी सोच रहा था क्या आपके वहाँ पर बहुत सी बर्फ गिरी है? बहुत सी बर्फ तो ठीक है, वहाँ सिनसिनेटी में कुछ बर्फ नहीं है, वहाँ पर यहाँ तक इतनी बर्फ भी नहीं है जितनी कि यहाँ पर है, वहाँ पर कुछ बर्फ है ही नहीं। और पहली बार कल ही मैंने सिनसिनेटी में प्रचार किया था, और सो हमारा एक बहुत ही अच्छा दिन था। नई सभा के लोग थे, अब तक एक भी वर्ष नहीं हुआ है, और ये बहुत ही अच्छी सभा थी, कुछ अच्छे लोग थे, हमने संगति का आनंद लिया। फिर उन्होंने अभी मेरे लिए फोन किया कल कोलंबस पर होने के लिए, किसी और सभा को समर्पित करने के लिए, और ये वो सभा जिसे भाई शेकरिन को लेना चाहिए था, लेकिन मुझे वहाँ पहली बार प्रार्थना को लेना होगा। ये एक मुझे ठीक इसके बाद फिनिश के लिए जाना था, आप जानते हैं, और हम गए। हम फिनिश के लिए 12 तारीख को निकलेंगे, बिजनेसमैन के नाश्ते पर होंगे, और मैं नहीं जानता बस इसे कहाँ पर रखा गया है। मैं सोचता हूँ रामदा में इसे रामदा पर रखा जाना होगा। बिजनेसमैन के नाश्ते की सभा वहाँ हमेशा की तरह होगी। और फिर रविवार को मैं निकल जाऊंगा, और रविवार को लगभग 12 दिनों के आसपास ही मैरीकोपा घाटी से होते हुए फिनिक्स टूसॉन, और मुझे सोमवार रात को भोज के लिए होना है। उसी सोमवार रात को सेवकों के साथ एक भोज है, और फुल गॉस्पल बिजनेसमैन के साथ टूसॉन में है। और सो फिनिक्स में वापस आकर मैं सोचता हूँ गैलेंडेल और विभिन्न स्थानों पर जाना है, और बाद में कन्वेंशन आरंभ होगा 20 बाइफ्रेड, क्या तारीख है, क्या आपको याद है? 24 से लेकर 28 या 29 तक, कुछ ऐसे ही आसपास। और तब प्रभु ने चाहा तो हम वापस घर पर आ जाएंगे, हम देखेंगे हम यहाँ पर कितना आगे बढ़े हैं, हम देखेंगे 7 मोहरों पर या उस पर, और देखेंगे हम यहाँ से कहाँ पर जाते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि किसी ने तो मुझे बताया हमारे यहाँ पर कुछ बच्चों को समर्पण किया जाना है, क्या यह सही है? क्या कुछ माताएं हैं जिन्हें अपने बच्चों को समर्पण करवाना है? कुछ तो डॉक ने मुझे बताया, तो ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ। ओ हाँ, जी हाँ, हाँ श्रीमान ये है तो ठीक है, क्या आप बहन और भाई लोग अपने छोटे बच्चों को ऊपर लेकर आएंगे? धन्यवाद बहन। मैं सोचता हूँ ये बहुत ही उपयुक्त समय है बच्चों को लाने का, ये क्रिसमस है। भाई नेविल क्या आप आएंगे? अब जैसे आज सुबह ये प्रेमी जन उनके बच्चों को लाते हैं, ये बस अब बहुत से लोग बहुत से कलीसियाओं से हैं, और क्या कल आप में से कोई कन्वेंशन में था? किस तरह से भाई ब्राउन एसपी कॉपलिन थे, पवित्र आत्मा से भर गए, उन्होंने पेंटिकॉस्टल विश्वासियों के लिए क्षमा मांगी बालकों को बपतिस्मा देने पर, तो उसे कहने से पहले उसे जो करना था तो एपिस्कोपलिन छिड़काव के द्वारा बच्चों का बपतिस्मा करते हैं, जिसे वे बपतिस्मा कहते हैं। बपतिस्मा का मेरे लिए मतलब होता है अंदर जाकर डुबाना, एक दफनाना, और लेकिन बहुत से लोग इसे करते हैं। यह एक पुराना, यह एक तरीका है जो वास्तव में कैथोलिक कलीसिया में लाया गया, और इसे मेथोडिस्ट और एपिस्कोपलिन लूथरन के अंदर लाया गया, और इसमें से बहुत से ऐसा करते हैं। मेथोडिस्ट इसे करते हैं। ये नाजरीन और मेथोडिस्ट के बीच में अलगाव था जो शिशुओं का बपतिस्मा था। नाजरीन का हरेक शब्द मेथोडिस्ट के समान है शिशुओं के बपतिस्मे को छोड़कर, इसलिए तब वे उस कारण से बाहर आ गए। चर्च ऑफ क्राइस्ट एक मसीही कलीसिया है हर बात में, सिवाय कलीसिया में संगीत के, और सो ओह वे छोटे छोटे विवाद जिससे वे अलग हो जाते हैं, भाईचारे और इत्यादि को तोड़ देते हैं। हम सब यीशु मसीह में एक हैं। आप कलीसिया से नहीं जुड़ सकते हैं, आप एक आवास से जुड़ सकते हैं, लेकिन आप कलीसिया से नहीं जुड़ सकते हैं। देखो आपको कलीसिया में जन्म लेना होता है, यह एक आत्मिक जन्म है, इसलिए अलग अलग लोगों के उनके अपने विचार हैं और हम बस उन्हीं के साथ चले जाते हैं, यह सब ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस भवन के लिए हम बिल्कुल उसी तरह से बने रहना चाहते हैं जिस तरह से बाइबल इसे बताता है, बिल्कुल। और बाइबल में शिशुओं के बपतिस्मे के लिए कोई भी वचन नहीं है, वहाँ छिड़काव करने के लिए कोई भी वचन नहीं है, और इसलिए केवल वो वचन है कि यीशु मसीह ने जो कहा वो हमारा उदाहरण है, और जब उन्होंने उसके पास बालकों को लाया उसने अपने हाथों को उन पर रखा और उन्हें आशीष दी और कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। और इसी तरह से हम करने का यत्न करते हैं। अब हम जानते हैं जैसे पास्टर और मैं इन बालकों पर हाथों को रखते हैं, ये हमारे प्रभु के स्थान पर रखे हुए हमारे तुच्छ हाथ हैं। उसके हाथ पवित्र थे, लेकिन आज की सुबह यदि वो सारी धरती पर ढूंढता था कि एक पवित्र हाथ मिल जाए, तुम्हें ये कहाँ पर मिलेगा? ऐसी कोई चीज देखो इस धरती पर नहीं है, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा हम उसे प्रतिनिधि कर रहे हैं। और वे बालक जिन्हें हम समर्पित करेंगे, हम उन पर अपने हाथों को रखेंगे और प्रार्थना को अर्पित करेंगे, और जो लोगों के लिए दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, और होने पाए आपके घर में वे छोटी गोद में हों ताकि मार्ग को उजागर करें जब आप उनके साथ होते हैं, होने पाए वे परमेश्वर की शिक्षा में बढ़े, और होने पाए ये छोटे बच्चे परमेश्वर के राज्य में अब महान कार्य करने वाले बने, यदि आने वाला कल है तो। ये हमारी सच्ची प्रार्थना है। तो ठीक है, होने पाए, प्रभु आशीष दे। आइए देखें, मैं सोचता हूँ हम यहाँ से आरंभ करेंगे, इस छोटे बालक से, छोटे बालों वाले बालक से जो मेरी ओर बहुत देर से देख रहा है, बस एक प्रकार से ओह प्रभु मेरी पत्नी यहाँ होनी चाहिए थी इस छोटे बालक को पकड़ने के लिए, मैं हमेशा ही डरता हूँ मैं उन्हें गिरा दूंगा। ओह क्या ही सुंदर छोटा बालक है, तुम कैसे हो? क्या ही उपयुक्त समय है जब एक चरनी में एक बालक को पाया गया था, एक क्रिसमस का समय बालकों को वापस परमेश्वर को समर्पण करने के लिए। इसका नाम क्या है? सैमुअल थॉमस। अब यह एक बहुत ही अच्छा नाम है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, जब ये खुशहाल छोटा सा जोड़ा आज सुबह एक छोटे से आनंद के चिन्ह के साथ आए हैं, जिसे आपने उनके एकता के लिए जोड़ा है, छोटा सैमुअल थॉमस, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस बालक को आशीष करेंगे, और जब हम उसे आपकी उपस्थिति में उठाते हैं आपके पवित्र अनदेखे हाथों के लिए, ताकि आप इस बालक को आशीष दें। होने पाए ऐसा होने दो प्रभु कि ये बालक जिए, और यदि आने वाला कल है तो होने पाए परमेश्वर के राज्य के लिए एक बड़ा कार्य करने वाला हो, इसके माता पिता को आशीष देना। और अब पिता हम इस छोटे सैमुअल थॉमस को आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित जीवन, आमीन। परमेश्वर आपको और आपके पति को आशीष दे, और होने पाए आपके पास खुशी हो और होने पाए वहाँ चमकता एक छोटा चिन्ह आपके जीवन में हो, आपकी सारी जीवन की यात्रा में परमेश्वर आपको आशीष दे। अब क्या यही वो छोटा है? अब मैं इस भाषा को नहीं समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ वे क्या करते हैं, लेकिन मैं इसे समझ नहीं सकता हूँ। ज्यादा समय नहीं हुआ जब मैं जर्मनी में था, मैं एक भी जर्मन शब्द नहीं बोल सकता हूँ। मैंने कहा, लेकिन एक बात जो यहाँ आप जर्मन लोगों के बारे में है, मैंने कहा मैं जर्मन नहीं समझता हूँ। मैंने कहा हरेक, मैं जब रास्ते पर जा रहा था और माँ अपने एक बच्चे को लिए हुए थी और ये इंग्लिश में रो रहा था। तो मैं सोचता हूँ उसे कुछ तो करना है। मैं आप सबको उलझा दूंगा। जब मैं मीडिया से ऐसा बोलता हूँ, वे बस इन बातों से उलझ जाते हैं। आप जानते हैं, वे बात को नहीं पकड़ पाते हैं। एलिसिया काय कार्लियल, एलिसिया काय कार्लियल, यह एक सुंदर नाम है। एलिसिया काय, मैं इसे पसंद करता हूँ। क्या आप इस छोटी बहन को यहाँ पर लाओगे? ओह, क्या मैं भी तुम्हारे हाथों को यहाँ पर रखूँ बहन? तो ठीक है। आप जानते हैं, जब इसराइल ने उनके बलिदान को लाया, जिसे मैंने कल प्रचार किया, उस वेदी पर लाया, देखो उन्होंने अपने हाथ को इस पर रखा क्योंकि उन्होंने अपने बलिदान के साथ खुद की पहचान दी। आपके बच्चों पर आपके रखे हुए हाथ, तब आप बालक के साथ पहचान को देते हैं। क्या यह ठीक है? और हम इसके ऊपर हमारे हाथों को रखते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना में खुद की पहचान को दे रहे हैं। इस छोटी एलिसिया काय के लिए यह सही है। कार्लेल, हमारे स्वर्गीय पिता, हम ये छोटी महिला को आपकी ओर उठाते हैं। परमेश्वर, ये आनंद का चिन्ह जिसे आपने इस परिवार को दिया है, इस एक छोटी सी लड़की को आशीष देना। प्रभु, इस छोटी प्यारी चीज को मैंने यहाँ पर आज की सुबह मेरे हाथों में पकड़ा है, जैसे इस बच्ची को माँ लाती है, आपने इसे उसके लिए दिया है और अब वो इसे आपको दे रही है। यह उसके विश्वास और उसकी इच्छा को दर्शाता है प्रभु, कि उसका बालक परमेश्वर की शिक्षा के अंदर बड़ा हो। उसे आशीष देना प्रभु, और होने पाए वो लंबे खुशहाल जीवन को जिए और एक आने वाले कल के लिए बड़ा सेवक बने। यदि आने वाला कल है तो उस घर को आशीष देना जहाँ से आया है, इसे प्रदान करें प्रभु। अब इस छोटी प्यारी सी लड़की को समर्पण में आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब क्या यह सुंदर सी छोटी चीज नहीं है? आप जानते हैं, हर एक माँ के लिए उसका बालक धरती पर उसके लिए बहुत ही सुंदर होता है। यह सही बात है, क्या ऐसा नहीं है? परमेश्वर आपको आशीष दे। प्यारी छोटी सी चीज मुझे इस तरह से घूरकर देख रही है। अब मैंने मेरे हाथों को घुमा दिया है। अब तुम कैसी हो? तो ठीक है। यह भी छोटी सी एक प्यारी लड़की है। इसका नाम क्या है? लीथा। एक लीथा एन, लीथा एन फार्मर। ओह, क्या ही छोटी सी सुंदर लड़की है। क्या तुम यहाँ पर आओगी, मेरे साथ रहोगी? समझे, यह अच्छा है। अब यह भी एक प्यारी लड़की है, यह भी अच्छी दिख रही है। क्या तुम कलीसिया जाना पसंद करती हो लीथा? अब मैं कल्पना करता हूँ, इस तरह के छोटे बच्चों को हमारे प्रभु ने अपने हाथों में उठाया हुआ है। यह बहने, आप जानते हैं मैं यहाँ पर अब खड़ा हुआ कैसा महसूस कर रहा हूँ? आप समझते हैं मेरा क्या मतलब है? एक विवाह क्या है या एक समर्पण क्या है? आप परमेश्वर के पद पर खड़े हुए हैं। ओह प्रभु, ये बात मुझे हिला देती है। आइए अपने सिरों को हम झुकाएंगे। ओ परमेश्वर, हम आज सुबह को छोटी सी लीथा के साथ आए हैं और हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता कि आप लीथा को आशीष देंगे और जो कुछ भी वो अपने जीवन में करती है, होने पाए एक लंबा खुशहाल जीवन जिए। उसके माता पिता को आशीष देना, होने पाए वो एक घर में पले बड़े प्रभु, ताकि परमेश्वर की प्रशंसा करे और प्रेम करे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यदि आने वाला एक कल है, वहाँ वो परमेश्वर के राज्य में कार्य करने वाली बने, बीमारियों और इत्यादि चीजों को उससे दूर रखे जब वो अपनी यात्रा में होती है, और उसे आपके राज्य के लिए एक बड़ी आशीष बनाए। और हम छोटी लड़की को आपको समर्पण में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहादुर छोटी बच्ची। ओह, मैं इन छोटे बच्चों को प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ही डरता हूँ वे मेरे हाथ से छूट जाएंगे। आप जानते हैं, वे बहुत ही छोटे होते हैं, और फिर भी मेरी पत्नी ने मुझे बताया, कहा क्योंकि मुझे उन्हें संभालना कठिन होगा। सो ये सही बात है, वे बहुत ही चंचल होते हैं, आप जानते हैं। और अब क्या कोई एक है जो प्रार्थना करवाना चाहता है, या विशेष बात के लिए प्रार्थना या कुछ तो है और हम आपके लिए प्रदान कर सकते हैं, तो ठीक है। बहन, क्या आप ठीक यहाँ पर आकर और खड़ी होंगी, तो ठीक है। यह एक, हम इन बातों को करना चाहते हैं, इसलिए यदि हम कुछ हमारे क्रिसमस के संदेश में जोड़ लें तो यह बहुत अच्छी बात होगी, तो ठीक है। श्रीमान, अब आइए हम अब अपने सिरों को झुकाएं। भाई नेविल, क्या आप मेरे साथ आगे आएंगे? हमारे स्वर्गीय पिता, इस क्रिसमस की संध्या को जहां उस महान प्रायश्चितता ने हमारे पाप और बीमारियों के लिए संसार में जन्म लिया था ताकि हमारे लिए एक बलिदान बन जाए, हम हमारी बहन को यीशु मसीह के नाम में लाते हैं, जो हमारे हाथों को उस बहन पर रखते हुए बिल्कुल वही किया है जो आपने करने के लिए कहा है। बीमारों पर हाथ रखोगे और वे चंगे हो जाएंगे। हम बहन की चंगाई के लिए इसे यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। भाई कोबल को बुलाएं। ओह, क्या ये ठीक है? आप कैसी हैं बहन? अब आइए हमारे सिरों को फिर से अब झुकाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे हम यहाँ सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में खड़े हैं, हमारी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जिस पर एक आपदा आ गई है और कुछ तो वहाँ पर किया गया है जिसने अब उसकी आंखों को अंधा कर दिया है। लेकिन आपने प्रभु, जैसे आपने मूसा से कहा, कौन मनुष्य की आंखों को बनाता है, और वहाँ केवल एक ही है जो सहायता कर सकता है और वो महान यहोवा है, सृष्टि करता। सो हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, जब हम इसे अपने हृदय में विश्वास करते हैं और हम बहन को आपके पास लाते हैं, और हमारा विश्वास, हम विश्वास के द्वारा आए हैं उस परमेश्वर की महान सुनहरी वेदी पर जहां वो लहूलुहान बलिदान मसीह है जो वेदी पर रखा हुआ है। और यशाया की पुस्तक में 53 अध्याय और उसका 5वां पद कहता है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अपराधों के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर तानना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अब हम हमारे विश्वास को बहन के साथ रखते हैं आपकी वेदी पर, और यीशु के नाम से मांगते हैं कि यह अंधापन हमारी बहन को छोड़ दे और जिससे वो देख सके परमेश्वर के आदर और महिमा के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन। भाई कोबल, पेरिस रिडहेड, हाँ जी हाँ, अच्छा है। अब हम हमारे भाई कोबल की सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे जाकर और मेरे एक मित्र से मुलाकात करेंगे। मैंने उनके साथ न्यूयॉर्क में काम किया है, जो पेरिस रिडहेड है। वो भाई जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाने के लिए मेरे घर पर आया था। और क्या उसका सुजन मिशन के साथ कुछ संबंध नहीं था? बहुत अच्छा है, तब आप लुइस विले को छोड़कर जा रहे हैं। ओ प्रभु, हम भाई के लुइस विले को छोड़कर जाने से नापसंद करते हैं। आपके हृदय को आशीष मिले भाई। मैं हमेशा ही भाई कोबल को याद रखूंगा। यह बहुमूल्य भाई जो परमेश्वर का संत है, मुझे उसके साथ पहला संपर्क याद आता है। वह रक्त स्वास से मरने पर था। मैं भाइयों के बीच उसके विख्यात नाम को जानता था। मैं वहाँ पर गया, वहाँ भाई लोग अस्पताल में खड़े हुए थे। मेरे जैसा एक छोटा सा व्यक्ति, मैं अंदर जाने से शर्मा रहा था, इसलिए मैं कोका कोला के स्थान के पीछे जाकर घुटने पर आ गया, वो स्थान जो अस्पताल के हॉल के बाहर था, और मैंने उसके लिए प्रार्थना की और वापस चला गया। फोन की घंटी फिर से बजने लगी। कहा, आप भाई कोबल को वहाँ पर देखने के लिए कभी नहीं गए? और मैं वहाँ पर गया। उन्होंने कुछ तो उसके नाक का ऑपरेशन किया था और चीरा था, और कुछ तो चीड़फाड़ किया था, और वो लहू के बहने से मरने पर था। मैंने वहाँ घुटने पर आकर और प्रार्थना की और लहू तुरंत ही रुक गया। हमारे स्वर्गीय पिता वो आपका दास है और वो हमारे बीच से जा रहा है, लेकिन फिर भी हम जुड़े हुए हैं प्रभु। हमारे हृदय हमेशा ही धड़केंगे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे वे अब एक दूसरे के पास जाते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता कि इसे आशीष दें मेरे भाई को, जब वो आपके महान सेवक के लिए सहायता के लिए जाते हैं। भाई पेरिस रिडहेड ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए बहुत ही दिलचस्पी दिखाई थी, परवाह नहीं करते हुए कि कंठरपत्ती क्या कहते हैं, वह किसी भी तरह परमेश्वर को चाहता था। भाई कोबल को आशीष मिले और उन्हें एक साथ आपके लिए काम करने के लिए आशीष करना प्रभु, जो भी उनके प्रयास हैं होने पाए कि वे एकजुट होकर काम करें जैसे पौलुस और सिलास ने किया था, इसे प्रदान करें प्रभु। उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक देना, उसने इंतजार किया हुआ है और यत्न किया है और जोर लगाया है, वो बढ़ता जा रहा है उस स्थान को पाने के लिए जहां आप उसे सचमुच भर देंगे प्रभु, और उसके लिए महान बातों को खोल दें और होने पाए यही वो समय हो प्रभु जो आपने उसे सिखाया और प्रार्थना की इस घड़ी के लिए प्रभु, क्योंकि हम संध्या के समय पर हैं। उसके शरीर को शक्ति देना प्रभु, उसे शक्ति की आवश्यकता है, होने पाए वो सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, उसकी देह को चंगाई दे, रूपांतर की सामर्थ होने पाए कि वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति में जा सके, हम उसे आशीष देते हैं प्रभु। आपको आशीष दे भाई कोबल, मेरी तरफ से भाई पेरिस को शुभकामनाएं देना, और मैं आशा करता हूँ आप सबसे बाद में मिलूंगा, मैं विदेश जा रहा हूँ भारत में। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप कैसी हैं बहन? धन्यवाद भाई। प्रभु यीशु, जैसे हम इस छोटी महिला को लाते हैं, अपने हाथों को उस पर रखे हुए हैं, अपने आप को उसके साथ जोड़ते हुए जैसे बलिदान के लिए, यह जानते हुए कि आपने इसकी प्रतिज्ञा की है, मैं उसकी चंगाई को आने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इस छोटी माँ के लिए जो यहाँ पर खड़ी है, उसके कंधे झुके हुए हैं और सफेद बाल जो दिखा रहे हैं वो संसार से जुड़ी हुई है, परमेश्वर होने पाए वो सामर्थ जिसने हमारे प्रभु यीशु को कब्र में से जिलाया, जैसे हम हमारी बहन के ऊपर अपने हाथों को रखते हैं, खुद को हम बहन के साथ जोड़ते हुए, और मसीह होने पाए वो सामर्थ जिसने कब्र में से उसे जिलाया, उसकी देह को चंगा करे यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरी बहन। स्वर्गीय पिता, जैसे हम हमारे हाथों को हमारी बहन के ऊपर इसी तरह से रखते हैं, यीशु मसीह के नाम में, होने पाए वो परमेश्वर की महिमा के लिए चंगी हो जाए, आमीन। महिमा में पिता, हम हमारे हाथों को बहन के ऊपर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम में, होने पाए यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर की महिमा के लिए वो चंगी हो जाए, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन। स्वर्गीय पिता, हम अपने हाथों को यहाँ हमारे भाई पर रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसकी चंगाई के लिए, होने पाए वह यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे हमारी बहनों में से यह एक बहन है जो दूर से यात्रा करके आई है इस सभा में होने के लिए, लेकिन वो आज सुबह यहाँ पर खड़ी हुई है और हम अपने आप को उनके साथ जोड़ते हैं प्रभु सुसमाचार में, जैसे हमारे हाथों को एक दूसरे पर रखते हुए और उस पर रखते हैं, होने पाए स्वर्ग का परमेश्वर इसे देखता है, जब वो कहता है यदि दो या तीन धरती पर आपस में सहमत होते हैं, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तीन एक साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहन को चंगा करें, प्रभु यीशु के नाम में। उसी प्रकार से प्रभु हम हमारे हाथों को यहाँ हमारी बहन पर रखते हैं, और जैसे हम सहमत हैं यीशु मसीह के नाम में, होने पाए वो चंगी हो जाए। स्वर्गीय पिता, कहा जाए तो उसका अद्भुत मसीह जीवन है, पत्नी को कैंसर हो गया है, ओ परमेश्वर वो उसके लिए खड़ा हुआ है, मसीह उस बहन के लिए खड़ा हुआ है, अब शैतान तू उसे छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, इसे विश्वास करे भाई, वो ठीक यहाँ पर बाजी को हार चुका है, इस दिन को याद रखना। हमारे स्वर्गीय पिता, ये हमारी बहन जो हमारे पास आती है प्रभु, और जैसे वो जीवन का उदाहरण है जो वो जीती है, और वो अपनी चंगाई के लिए आई है और प्रभु हम हमारे हृदय से और हाथों को आपके साथ जोड़ते हुए हम आशीषों को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारी बहन रिचर्ड प्रभु जो आपकी दासी है जो इस बड़े उत्सव के समय पर आई है यीशु के नाम में वो चंगी हो जाए आमीन। स्वर्गीय पिता हम इस छोटी प्यारी महिला को आज सुबह लाते हैं प्रभु यीशु के नाम में हम हमारे हाथों को उस पर रखते हैं और उसकी चंगाई के लिए यीशु के नाम में मांगते हैं आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता हम आते हैं और अपने हाथों को हमारी बहन पर रखते हैं उस नाम से जो सबसे पवित्र नाम है यीशु मसीह होने पाए वह परमेश्वर की महिमा के लिए चंगी हो जाए। हमारे स्वर्गीय पिता जैसे हम अपनी बहन को आज आपके पास लाते हैं आपके अनुग्रह का एक चिन्ह जो आपने किसी तरह से इस महिला के लिए किया है वर्षों और वर्षों पहले उसके जीवन में कुछ ही घंटे जीने के लिए बचे थे कैंसर ने उसे खा लिया था और उसने परमेश्वर के राज्य के लिए जिया है आज उसे चंगा करे प्रभु जो कुछ भी गलत हुआ है यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे स्वर्गीय पिता जैसे हमारी बहन वो भी परमेश्वर के अनुग्रह का चिन्ह है जो गृहित निंदनीय नशे की आदि शराबी थी और अब वो एक पूरी तरह से ठीक आनंददायक महिला के जैसे खड़ी है क्या ही चंगाई का नमूना है प्रभु और अब उसका हृदय दूसरों के लिए जल उठता है जो पीड़ा में है क्योंकि वह जानती है कि वहाँ एक महान चंगा करता है। उसने ठीक अभी अभी अलग अलग तीन नामों को बताया है पिता मैं प्रार्थना करता हूँ और यहाँ खुद को हमारे भाई के साथ जोड़ते हुए हमारे पास्टर और वो बहन और प्रभु यीशु और होने पाए उसके महिमामय नाम में ये तीन लोग परमेश्वर के राज्य के लिए आजाद हो जाएं आमीन। धन्यवाद भाई। महिमा में पिता हम अब हमारे हाथों को हमारे भाई वे के ऊपर रखते हैं वो तीन चीजों के लिए मांग रहा है और आप उन्हें जानते हैं प्रभु और हम विश्वास करते हैं कि यह लिखा हुआ है और जानते हैं कि वचन ऐसा कहता है सारी चीजें और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता कि यह जो उसने मांगा है वो उसके लिए उजागर हो जाए यीशु मसीह के नाम में आमीन। स्वर्गीय पिता हम हमारे हाथों को हमारे भाई पर रखते हैं प्रभु यीशु के नाम में और उसकी चंगाई को परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं इसे प्रदान करे पिता यीशु के नाम में आमीन। स्वर्गीय पिता हम अपनी बहन पर अपने हाथों को रखते हैं परमेश्वर के राज्य के खातिर यीशु मसीह के नाम में जो कुछ भी उसने कहा है उसमें वो आज्ञाकारी बनी रहे होने पाए कि यीशु मसीह के नाम में वो चंगी हो जाए आपको आशीष दे बहन। उसी तरह से हमारे भाई के ऊपर हम अपने हाथों को रखते हैं यीशु मसीह के नाम में कि आप उसे चंगा करेंगे परमेश्वर के राज्य के खातिर आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई। बहन अर्गन ब्राइट स्वर्गीय पिता हम बहन अर्गन ब्राइट के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उसे चंगा करेंगे इसे प्रदान करें प्रभु उसकी विनती होने पाए इसे उसे दे दीजिएगा हमारे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु यीशु हमारे हाथों को भाई के ऊपर रखते हुए यीशु मसीह के नाम में उसकी विनती को स्वीकार करें आमीन। इसे विश्वास करें मेरे भाई। स्वर्गीय पिता, हम अपने हाथों को इस छोटे लड़के पर रखते हैं यीशु मसीह के नाम में, और होने पाए जैसे हम आज की सुबह एकत्र खड़े हुए हैं, विश्वास के द्वारा हम इस बालक को आपके पास लाते हैं, और होने पाए परमेश्वर की आशीष, मसीह की चंगाई की सामर्थ इस छोटी सी देह में प्रकट हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। पिता परमेश्वर, इस प्यारे पिता के ऊपर जो इस लड़के को लेकर आया है, हम इसके लिए भी मांगते हैं कि आप अपनी चंगाई की सामर्थ को प्रकट करेंगे यीशु के नाम में, आमीन। आपको आशीष मिले मेरे भाई। स्वर्गीय पिता, जैसे बहन पैगन पॉक, हमारी बहुत ही अच्छी बहन, आवश्यकता में है और आप उसके प्रति महिमा में रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आशीषें निरंतर उसके हृदय में बहती रहें, और सारी बीमारियां और उदासी जिसमें से होकर वो जा रही है, होने पाए मसीह की सामर्थ उसे वापस लौटाए प्रभु 100 गुना, और उसे पूरी तरह से ठीक करे, और उसके प्रियजन को यीशु के नाम में, आमीन। आपको आशीष मिले। स्वर्गीय पिता, हम अपने हाथों को हमारे भाई पर रखते हैं और मांगते हैं यीशु मसीह की सामर्थ उसे ठीक करे इस मसीह बालक के जरिए से, जिसके लिए हम इस समय पर उत्सव को मना रहे हैं, आमीन। महिमा में परमेश्वर, जैसे हम अपने हाथों को हमारी बहन पर रखते हैं जो आपकी दासी है, यीशु मसीह के नाम में, होने पाए वो आपकी महिमा के लिए चंगी हो जाए, आमीन। प्रभु, हम अपने हाथों को बहन के ऊपर रखते हैं यीशु मसीह के नाम में, होने पाए वो चंगी हो जाए, आमीन। स्वर्गीय पिता, हम अपने हाथों को यहाँ इस बहन के ऊपर रखते हैं यीशु मसीह के नाम से, होने पाए परमेश्वर की सामर्थ उसे चंगा करे, आमीन। प्रभु यीशु, बहन की विनती को स्वीकार करे, जैसे हम इसे परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यहाँ पर छोटी बहन को देखते हैं जो इन सारे वर्षों में अब भी हमारे साथ है, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसकी विनती को देंगे यीशु के नाम में। क्या और परमेश्वर सर्वव्यापी है, सारे विश्व भर में है, यहाँ पर है, हर कहीं पर है, और क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर करेगा आज की सुबह नार्वे में उसे चंगा करेगा? क्या आपकी बेटी और आपके पिता और आप उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं? प्रभु, आप इस छोटी सी महिला को देखते हैं और हम जानते हैं कि आप उसकी विनतियों को जानते हैं, आपने उसकी आवाज को सुना है, आप किसी तरह से जानते हैं कि वो यहाँ पर खड़ी हुई है, जब एक चिड़िया भी जमीन पर नहीं गिर सकती है आपके इसे जाने बिना, और फिर मैं जानता हूँ कि आप इस विनती को जानते हैं, हम बस इन चीजों के लिए बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में, होने पाए वे उनके लिए ये प्रदान करे यीशु मसीह के नाम के जरिए से, आमीन। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम उसकी माँ के लिए जो बूढ़ी है और उसका ऑपरेशन होने जा रहा है, परमेश्वर सहायता करें, और यदि वहाँ पर ऐसा कुछ और भी है जिसे हम कर सकते हैं प्रभु इस दिन से पहले, अब इसे मुझे या किसी और को बताएं, हमारे भाई को सांत्वना देने के लिए इसे प्रदान करें पिता, मैं यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु, हम अपने हाथों को हमारी बहन के ऊपर रखते हैं यीशु के नाम में, होने पाए आप उसे चंगा करें और उसे ठीक करें, आमीन। होने पाए स्वर्ग का परमेश्वर उसकी विनती को स्वीकार करे यीशु मसीह के नाम में, मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन, आप बहन मार्गरेट हैं? जी हाँ, तो ठीक है। प्रभु यीशु, मैं हमारी बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसका पति उसके लिए खड़ा हुआ है, किस तरह से वे संघर्ष करते हैं और आपने किस प्रकार से अपने आप को उनके लिए जाहिर किया और अपने आप को उन्हें दिखाया है प्रभु, मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ, प्रदान करें प्रभु कि उसकी पत्नी चंगी हो जाए जो हमारी बहुमूल्य बहन है यीशु के नाम में। स्वर्गीय पिता, यह विनती जो ये भाई मांग रहा है, आप उन सारी परिस्थितियों के बारे में जानते हैं प्रभु। मैं आपके सेवक के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, प्रदान करें और उनके देहों के लिए जिसके लिए वो बोल रहा है। अब आप उन विनतियों को जितना मैं जानता हूँ उससे भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए बस मेरे खुले हृदय से मांगता हूँ आपकी वेदी पर, और मेरी प्रार्थना को भाई के साथ यहाँ पर रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि उनका उत्तर दिया जाएगा। आमीन। स्वर्गीय पिता, हम हाथों को हमारी बहन के ऊपर रखते हैं, उसकी विनती के लिए होने पाए इसे उसके लिए स्वीकार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे बहन। प्रभु, हम हाथों को हमारी बहन के ऊपर रखते हैं, उसकी विनती के लिए यीशु मसीह के नाम में होने पाए ये स्वीकार हो जाए। पिता परमेश्वर, यह हमारे भाई उनकी विनती के लिए होने पाए उसे दे दी जाए। प्रभु, उसने इन सारे वर्षों में आपकी सेवा करने का यत्न किया है, परेशानी में से होते हुए वो ठीक अभी भी खड़ा है। परमेश्वर, होने पाए आज की सुबह वो उस वेदी के सींगों को पकड़ ले, यहाँ किनारे में फूटे की ओर आते हुए कहे, यह वो घड़ी है जब यह आता है, इसे प्रदान करें। और होने पाए उसकी पत्नी और पोतों के लिए जो विनती है वो स्वीकार की जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई ब्रेवस्टर, इसे विश्वास करें। हमारे स्वर्गीय पिता, ये छोटी माँ जो यहाँ पर आज की सुबह खड़ी है, कई लोगों के लिए बा के जैसे रही है, अब वो प्रार्थना कर रही है, अब वो अपने प्रिय जनों के लिए प्रार्थना कर रही है। प्रभु, उसने ये विनती की है, हम सब अपने आप में एकत्र हो सकते हैं अपने हाथों को उठाते हुए एकता की नाई कि हम यह विश्वास करते हैं, और आपकी वेदी के सामने हमारे हृदय से हम इस विनती को मांगते हैं जो बहन मांग रही है, यीशु मसीह के नाम में स्वीकार की जाए। आमीन। परमेश्वर, आप उन लोगों को जानते हैं जिसके लिए वो खड़ा हुआ है, हर एक जो इस समय पर उसके हृदय में है, और हम अपने आप को उसके साथ रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। होने पाए इस विनती को स्वीकार करें। आमीन। ओ परमेश्वर, हम बहन हेटी को जानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जैसे हम अपने हाथों को उस पर रखते हैं, प्रदान करें कि वह पवित्र आत्मा उसके साथ हो और वापस उसके हृदय के लिए प्रकट करें। हम उसके बहुमूल्य लड़कों के लिए सोचते हैं, दोनों लड़कों के लिए। मैं उस दिन वहाँ पर उस कमरे में बैठे हुए सोच रहा था, उस छोटे से दीन घर में आपने कहा, उससे कहो वो जो चाहे मांग ले, तब केवल शब्द को कहना, उसने मांगा। परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि आप अपने लोगों की चिंता करते हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे हम अपने हाथों को उस पर रखते हैं यीशु मसीह के नाम में, होने पाए उसकी विनती स्वीकार हो। प्रभु परमेश्वर, जैसे हम अपने हाथों को एक छोटी सी बहन पर रखते हैं जो इन चिकने रास्तों और इत्यादि से होकर गाड़ी चलाकर आई है, यहाँ आने का यत्न किया है, आप इसके बारे में सब जानते हैं। मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जैसे हम अपने हाथों को उस पर रखते हैं यीशु मसीह के नाम में, होने पाए वह ग्रहण करे जिसके लिए उसने मांगा है। आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे यह बहुमूल्य भाई किस तरह से एक बार वह पूरी तरह से निश्चित हुआ था, वह पुरानी सिगरेटों और इत्यादि चीजों ने उसे बांध दिया था, उसकी एक बार मुलाकात होती है और रुका रहा, और आप हमें कुछ भी नहीं बताते हैं, उसकी एक और मुलाकात होती है और वो आप रुके रहे, आप हमें कुछ भी नहीं बताते हैं, और अतः एक सुबह वहाँ पर बैठा हुआ यहाँ पर वो आ गया, तब वो पूरी तरह से उस पर था। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप सच्चे हैं, आपके वचन कभी नहीं चूकते हैं, और उसने कहा जो परमेश्वर पर रुका रहता है वो नया बल प्राप्त करेगा, और अब वो आज की सुबह तीन विनतियों के साथ आया है प्रभु, और हम यहाँ तीन विनतियों के साथ खड़े हैं, एक त्रिएकता के कार्यस्थल के प्रतिज्ञा के साथ जो एक में बने हुए हैं, एक सच्चे और जीवित परमेश्वर के नाम में यीशु मसीह। होने पाए उसकी विनती उसे दे दी जाए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई। प्रभु, ओ प्रभु, प्रभु आप उनकी विनतियों को सुनते हैं, आप जानते हैं उनका उत्तर किस तरह से देना है प्रभु। तो हम केवल हमारी बहन बेकर के ऊपर अपने हाथों को रखते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम हमारे निवेदन को बहन के साथ रखते हैं चंगाई के लिए। आमीन। आपको आशीष मिले मेरी बहन। स्वर्गीय पिता, जैसे हम अपने हाथों को इस भले भाई पर रखते हैं, आज उनकी सेहत की तस्वीर वैसी ही दिखाई देती है, लेकिन कभी कभी यह भरमाने वाली चीज होती है। सो मैं प्रार्थना करता हूँ आप उसकी विनती को स्वीकार करेंगे। जो कुछ भी उसके हृदय में है उसे दे दीजिए, जो भी उसने मांगा है, यीशु के नाम में। आमीन। स्वर्गीय पिता, अपने हाथों को हमारी बहन के ऊपर रखते हैं और इसे मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आप उसकी विनती को आपकी महिमा के लिए दे देंगे। आमीन। प्रभु यीशु, हम अपने हाथों को हमारे भाई के ऊपर रखते हैं और उसकी विनती के लिए मांगते हैं। हम बस इसे जाहिर करते हैं प्रभु, जैसे हम अपने हाथों को उस पर रखते हैं, हम अपने आप को जोड़ते हैं और इस एकता में हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई। पिता परमेश्वर, हमारी बहन के साथ भी हमने इसी प्रकार किया है यीशु मसीह के नाम में। होने पाए उसके पास उसकी विनती है। आपको आशीष मिले मेरी बहन। परमेश्वर, जैसे हमारा बहुमूल्य भाई एक दिन मारा जा सकता था, लेकिन आप उसे लेने पर नहीं थे, सो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप उसकी विनती को दे देंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप जानते हैं इसे कैसे विश्वास करना है। हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे हमारी छोटी परेशान बहन आगे बढ़ रही है, जानते हुए प्रभु कि बहुत सी उसकी सतावटें रही हैं, लेकिन आपने प्रतिज्ञा की है बहुत से धर्म के कारण सताए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें उन सब से छुड़ाएगा। उसे इस छुटकारे की बहुत अधिक आवश्यकता है प्रभु। हम अपने हाथों को उस पर रखते हैं और हम उस विपदा को निकम्मा ठहराते हैं प्रभु आपकी सुनहरी वेदी पर। होने पाए परमेश्वर की सामर्थ उसे आगे बढ़ाए और उसे ठीक करे। आमीन। तो ठीक है, आप सभी रुकेंगे क्या? आप पूरे समय पीछे बैठे हुए थे? जी हाँ, मैंने आपको नहीं देखा। ओह, यहाँ पर कोई अचरज नहीं। ये वो मनुष्य है जिसे बुलाया गया है, वे उसे माइनर बुलाते हैं, यही उसका नाम है। लेकिन यह एक समय माइनर यानी कम था, लेकिन अब मेजर ज्यादा है। कुछ भी कहें आप, जो भी चाहते हैं। भाई माइनर आर्गन ब्राइट फुल गॉस्पल सुसमाचार बिजनेसमैन में से एक हैं, उनमें से एक। इस बड़े कदम को उठाने के लिए सहायता पाई कि हम सब एक साथ मिलकर काम करने का यत्न कर रहे हैं, जिससे कि सब लोग पहचान जाएं उनके संबंध और संप्रदायों के परवाह न करते हुए कि हम सब मसीह में भाई हैं। उसने एक दिन कुछ तो कहा। उसने एक सभापद को या कोई तो ऊपर पद पर था, उसे कुछ तो लिखा। यह पूरी तरह से प्रभावित करने वाला था। और मैंने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप इसे लिखकर भेजें। मैं चाहता हूँ कि कलीसिया में आकर और इसे कहें। कहा, मैं पहले से ही बता चुका हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ टेप पर है, और मैं चाहता हूँ कि आप भाई लोग इस टेप को बाहर निकालें। भाई जिम, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वहाँ कमरे में सुन रहे हैं, तो वास्तविक कौशलता का उदाहरण है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, समझे? तो ठीक है भाई अर्गम ब्राइट, जो भी आप कहना चाहते हैं कहिए। आमीन। आमीन। क्या ही सच्चाई है। आमीन। क्या ही सच्चाई है। शांति आती और जाती है, और सुख और यह बस धुंधला हो जाता है, लेकिन आनंद बना रहता है। तो बाहर ये एक खराब दिन है, अंदर ये अच्छा दिन है। आप जानते हैं, मैं एक व्यक्ति से मिला, या एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि वो हाल ही में एक व्यक्ति से मिला और उसने कहा, वो शिकायत कर रहा था, ओह, कहा क्या ही खराब दिन है। उसने कहा, बारिश हो रही है और होती ही जा रही है। उसने कहा, यह तो बहुत ही बढ़िया दिन है। और उस व्यक्ति ने कहा, भला कैसे इस तरह से एक तुम बढ़िया दिन कह रहे हो। उसने कहा, डॉक्टर ने मुझे एक वर्ष पहले कहा मेरे पास जीने के लिए सिर्फ एक ही हफ्ता था। कहा, तो हर एक दिन एक बहुत ही बढ़िया दिन है। जी हाँ, सो यह सही बात है, यह बहुत ही बढ़िया दिन है। इसलिए हम सब जैसे भाई ने कहा, हम सब मृत्यु के लिए दोषी ठहराए गए हैं। ये सही बात है, मरने के लिए और पीड़ा में जाने के लिए, लेकिन यह एक बहुत ही बढ़िया दिन है। हम मसीह में जीवित हैं और अब नहीं मर सकते हैं, यह पूरा हो चुका है। अब देखें, अब वास्तव में मसीह में हैं। अब आइए, अब भवन में भाई अर्गम ब्राइड, मैं ज्यादातर अपने समय को लेता हूँ। यदि आपको भूख लगी है, भोज के लिए जाना है, आप जा सकते हैं। मैं आज सुबह थकावट को महसूस कर रहा था, मेरे पास बस यहाँ पर कुछ तो और कहने के लिए था, जिससे कि मैं अपने आप को कुछ समय तक बनाए रखूं, प्रभु की आत्मा मुझ पर आने तक मैं कर सकता हूं। तो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। इससे पहले हम वचन को पढ़ें, आपके पास और दूसरी बातों के लिए कितनी विनतियां हैं, हो सकता है जिसके लिए आप लोगों ने प्रार्थना नहीं की थी। हम केवल इसे जानना चाहेंगे, जैसे हम अपने हाथों को उठाते हैं। आइए आज की सुबह हम खड़े हो जाएं, जब हम प्रार्थना करते हैं यह आपकी अवस्था को बदल देगी और हो सकता है कुछ सहायता मिले। और प्रार्थना के बाद मैं चाहता हूं कि आप कुछ मिनट के लिए खड़े ही रहें, जब तक हम वचन को नहीं पढ़ लेते। हमारे लिए यह बहुत ही उचित होगा कि हम सम्मान पूर्वक खड़े हों जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम बस उसी तरह नम्रता के साथ आते हैं जैसे हम जानते हैं कि कैसे आना है। संसार और इसकी सारी अभिलाषाओं की इच्छाओं से हृदय को खाली करके, जैसे हमारे भाई ने हवाला दिया या हमारे लिए बताया, कहा, आनंद, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। और हम आनंद से भरे हुए हृदय के साथ आते हैं, जो हमारे पास यह सौभाग्य है आपकी उपस्थिति के अंदर आने के लिए, कोई भी याचना को मांगे जिसकी हम इच्छा रखते हैं। और आनंद आता है जब हम वचन में देखते हैं और प्रतिज्ञा की गई है, यदि हम विश्वास करें हमारे लिए दिया जाएगा। क्या ही मनुष्य के हृदय को रोमांचित कर सकता है जो धड़कता है, यह जानने के अलावा कि वो अमरहार अनंत परमेश्वर ने ऐसी प्रतिज्ञा को दिया है। अब क्षमा करना प्रभु, और यदि हमने पाप किया है या जो कुछ भी ऐसा किया है जिससे आप अप्रसन्न हुए थे, कि इससे पहले हम उन चीजों को मांगे, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा लिखा हुआ है, यदि हमारा हृदय हमें दोषी नहीं ठहराता है, हमारी याचिका है। लेकिन अब हमें क्षमा करना, जो कुछ भी हमने किया है, हमारी ओर देखे प्रभु दया और करुणा के साथ। देखे क्या ही हम दयापूर्ण झुंड है प्रभु, छोटे छोटे जानलेवा रेंगने वाले जंतु यहाँ धरती पर हैं और इस पाप से भरे हुए स्थान में से साथ ही घसीटे जा रहे हैं। लेकिन हमारे हृदय की गहराई में हम जानते हैं कि कोई तो एक है, किसी दिन आएगा ताकि हमें यहाँ इस स्थान से ऊपर उठाकर एक बेहतर स्थान के लिए ले जाए, और हम इसमें आनंद करते हैं। और मैं हर एक विनती के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आप जानते हैं कि उन उठे हुए हाथों के पीछे क्या है, उनके लिए इसे प्रदान करें प्रभु। मैं खुद के लिए प्रार्थना करता हूँ, आज सुबह के लिए ताकत दें, आवाज के लिए सहायता करें और सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। और हम मांगते हैं कि आप इस बात पर सबको आशीष देंगे जो हम एकत्र होकर क्रिसमस की ऋतु को मना रहे हैं। प्रभु होने पाए हम क्रिसमस की सच्ची आत्मा को पाते हैं, और यह हमारे साथ हमेशा के लिए बनी रहे, क्योंकि हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं उसके कारण, आमीन। अब क्या हम कुछ क्षण के लिए खड़े होंगे? मैं आज सुबह मीका की किताब से पढ़ना चाहता हूँ, एक स्थान से, और एक और पढ़ेंगे इब्रानियों से, इब्रानियों के 12वें अध्याय से, क्योंकि एक साथ करके एक छोटे से विषय के लिए जिस पर मैं आज सुबह बोलना चाहता हूँ हमारे क्रिसमस के संदेश के लिए, ये है इब्रानियों 12:25। मुझे एक प्रकार से आज सुबह जल्दी करना था, जब मैं उठा मेरे पास कुछ भी तैयारी नहीं थी, उस स्थान पर नहीं था जहाँ मैं होना चाहता था, मेरा मतलब है होना चाहिए था। मैं मीका के 1 अध्याय के 2 पद से आरम्भ करूँगा। हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी, तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान दे, और प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुझ पर साक्षी दे, क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा और पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे और तराई ऐसी फटेगी जैसे मोम आग की आस से और पानी जो घाट से नीचे बहता है। और इब्रानियों का 12वां अध्याय 25वां पद हम इसे पढ़ते हैं, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। अब प्रभु परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर आशीष को जोड़िए और आज हरेक को वो बातें दे दीजिए जो आपके पास हमारे जानने के लिए है, जिससे कि हम यहाँ से छोड़कर जाएं और महसूस कर सके कि आपकी उपस्थिति में रहे थे और मैं एक नए रूप के साथ आगे जा सकता हूँ और एक बेहतर समझ के साथ और कुछ ज्यादा दृढ़ निश्चय होकर जो हमारे पास थी इससे ज्यादा जब हम इस इमारत में आए थे, क्योंकि हम इसे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं। अब कोई संदेह नहीं, यदि आपने वचन को सुना है जो एक क्रिसमस के लिए संदेश है, मैंने कहा था अब क्या यह अनोखा क्रिसमस का पाठ नहीं है। वो मेरा जो इसे करने का उद्देश्य है कलीसिया को कुछ तो बात पर लाना है, शायद हो सकता है कुछ अलग होगा, क्योंकि ये आपने रेडियो के जरिए क्रिसमस पर आप जानी पहचानी कहानी को सुनेंगे बार बार, ज्ञानी पुरुष की कहानी जो पूरब से आते हैं, जो मसीह बालक को ढूंढ रहे हैं और चरवाहों की आराधना और तारे का उपस्थित होना और ये क्रिसमस की कहानियां जो आज हमारे धार्मिक विश्वास की रचना करती है और ये बहुत ही अच्छी है, मैं उसके लिए धन्यवादित हूँ। लेकिन मैंने सोचा आज सुबह कलीसिया में और शायद हो सकता है हमारे पास्टर, हो सकता है आज रात, हो सकता है अगले रविवार, उस पर कुछ संदेश को लेकर आएंगे और मैंने सोचा तब लोगों को आज कुछ अलग दृष्टिकोण को दूं क्रिसमस के बारे में और मैंने इस वचन को चुना। अब कुछ ही शब्द, अब मैं देखता हूँ आप स्थानों को बदल रहे हैं, कुछ खड़े हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं और ये अच्छी बात है और जल्दी ही हमारे पास कमरा होगा, इसलिए हम इस गलियारे को नहीं भर सकते हैं, अग्निदल के नियम हमें ऐसा नहीं करने देते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हम बढ़ाएंगे प्रभु ने चाहा तो। उन्होंने पहले ही इस पर कार्य को आरंभ कर दिया है और जितना जल्दी हम कर सकते हैं हम इसे ले लेंगे और ये कुल मिलाकर एक अलग ही स्थान होगा। जब ये स्थान के लिए भौतिक भाग की बात आती है, ये निश्चय ही कोई पुराने भवन की तरह नहीं दिखाई देगा। वहाँ पर ये रंगीन कांच की खिड़कियाँ होंगी, उसके चारों ओर सजावटी ईंटें होंगी वहाँ पर और ये कुल मिलाकर अलग ही होगा, लेकिन पुरानी इमारत यहीं पर होगी। हमारे पास इसके लिए एक उद्देश्य है, देखो पुरानी दीवारों को रहने दो, देखो और हम बस इसे ढाक देंगे और इसके चारों ओर पत्थर को रखेंगे और इत्यादि, लेकिन यह बिल्कुल उसी तरह से बनी रहेगी। अब क्रिसमस, मैं चाहता हूँ कि वास्तव में लोग इस संसार में लोग समझ सके कि वास्तव में क्रिसमस क्या है। अब पहला शब्द क्रिसमस एक प्रकार का कैथोलिक प्रकटन है, इसका मतलब है मसीहा, CHRISTMAS। देखें क्राइस्ट मास, देखें इसे ठहराया गया था या रोमन कलीसिया से आरंभ हुआ और मसीह का जन्म अब दिसंबर के 25वें दिन पर नहीं हुआ था, ना यह तो सिर्फ एक पूर्ण रूप से विभिन्न समूहों का सिद्धांत है, इसके लिए यही सब है। सारा संसार जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा एक सड़ा हुआ घाव बन चुका है, यह सही है। बस यह कहीं भी कोई साफ चीज नहीं है, हर एक छुट्टी का समर्थन है। क्यों? सांता क्लॉज ने क्रिसमस के स्थान को ले लिया है जो चरनी में जन्मा था। खरगोश और चिकन और नई टोपियों ने पुनरुत्थान के स्थान को ले लिया है और परमेश्वर इन सब में कहाँ प्रकट होता है? देखा, इसका कारण ये है क्योंकि वो मनुष्य व्यवसायी हो गया है, क्योंकि उन्होंने महीनों पहले क्रिसमस के उपहारों को खरीदना आरंभ किया है। ये और क्या है मूर्ति पूजकों के लक्षण के सिवा? इसमें धार्मिकता के बारे में कुछ भी नहीं है। ओह, वे कहने की कोशिश करते हैं ज्ञानियों पुरुषों को उपहार देना यह तो केवल एक तसल्ली के लिए शैतान का बहाना है। यदि आप कुछ तो देना चाहते हैं तो ये मसीह के लिए आपका जीवन है, इसे एक दूसरे के लिए मत देना, ये उसे देना। यही है वो जिसके लिए वो मर गया, यही उसका आने का उद्देश्य है, समझे? लेकिन ये एक ऐसा स्थान होना है जहाँ ये छोटे बच्चों के लिए शराब है, कुछ छोटे पड़ोसी के पास वहाँ सड़क पर बहुत कुछ हो सकता है और दूसरे छोटे बच्चे के पास कुछ भी नहीं है और वे देखते रहते हैं, और ये तो कुल मिलाकर गलत बात है, ऐसा ही है। और व्यापारियों ने इन स्थानों पर अपने व्यापार को बढ़ा दिया है। क्यों? मेरी पत्नी कुछ छोटे बच्चों के लिए कुछ तो खरीदने के लिए गई, और ये लगभग 3 हफ्ते पहले की बात है। कहा, ओ हमारा सारा सामान बिक गया है, सारा माल बिक गया है, हमने इस वर्ष दुगना माल मंगवाया था, ये सारा बिक गया। समय से 3 या 4 सप्ताह पहले ही खरीदारी शुरू कर देते हैं। ओ क्या ही ये व्यवसाय करने वाले की एक बड़ी व्यवस्था थी। और आखिरकार क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस का कैसे कभी आरंभ हुआ, जिसे हम क्रिसमस कहते हैं, क्राइस्ट मास? यहाँ पर इसकी कहानी है जिसे मैंने थोड़ा कुछ संक्षेप में यहाँ एक पन्ने पर लिख कर रखा है। मैंने अभी पिछले साल ही इसे पूरा किया है। इससे पहले मेरे पास 7 कलीसिया काल थे, मैंने उन्हें यहाँ पर सिखाया है। मैंने निसिया परिषद को लिया और पूर्व निसिया परिषद और नियुक्त निसिया परिषद और निसियन फादर्स और हिस्टॉप की टू बेबीलोन्स और फॉक्स बुक ऑफ मार्टर्स और सभी, क्योंकि मैंने सुना है सेवक इसका हवाला देते हैं, लेकिन मैं इसे खुद के लिए पढ़ना चाहता था यह देखने के लिए कि जब मैं इसे पढ़ूंगा मैं समझ जाऊंगा या मैंने अपने लोगों को कहा है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे न्याय के दिन जवाब पूछेगा मैं जो लोगों से कहता हूँ। सो मुझे अब वो नहीं कहना है जो किसी और ने बताया है, जो वे पढ़ते हैं, मैं इसे खुद पढ़ना चाहता हूँ, देखो और जानना चाहता हूँ। अब वास्तव में क्रिसमस मसीह, मुझे विश्वास है और लगभग सिद्ध कर सकता हूँ, जैसे पुनरुत्थान को सृष्टिकर्ता की ओर देखकर सिद्ध किया जा सकता है, किस तरह से उसने इस वनस्पति जीवन की सृष्टि की और किस तरह से हर एक चीज उसकी सेवा के उद्देश्य को करता है, मरना ही है। और यदि ये मर जाते हैं या ये फिर से जीवित होते हैं, क्योंकि इसका चिरस्थायी जीवन होता है, लेकिन एक ही तरीके से वो वापस जी सकता है, वो है एक अंकुरित बीज, समझे? अब परमेश्वर ने खुद को उस सृष्टि में व्यक्त किया और ये दिखाता है ये सारे पागान के देवता और इत्यादि जो हमारे पास है वो सही नहीं है। देखो वो तो केवल ज्ञान विद्या और कल्पनाएं हैं, लेकिन वो एक जिसने धरती और आकाश को बनाया खुद को उस सृष्टि में से होकर वापस व्यक्त करता है जो वो उसकी योजना में है। और फिर यदि क्या कभी आपने सोचा है जब मसीह ने जन्म लिया था, जो परमेश्वर का पुत्र था, क्यों उसने एक चरनी में जन्म लिया, एक खलियान में और चरनी में लेटा था? क्योंकि वो एक मेमना था, वो घरों में जन्म नहीं ले सकते हैं, मेमने घरों में जन्म नहीं लेते हैं। और फिर क्या आपने ध्यान दिया है जब वे उसे कलवरी की ओर लेकर गए और कैसे वो दूर तक नहीं जा सका, उसके ऊपर ये क्रूस रखा हुआ था, वे उसे मारते गए जब तक उसकी पीठ लहूलुहान नहीं हो गई थी, और लेकिन वे उसके लेकर गए, वे मेमने को घात करने के लिए लेकर गए। देखा, वो एक मेमना था, तो ठीक है। और यदि ये सारी प्रकृति की गवाहियाँ, वो जो था, मेमने कब जन्म लेते हैं, दिसंबर या अप्रैल में? निश्चय ही, देखो यह तो केवल मूर्खता है। देखो इस तरह की एक बात को सोचना मूर्खता है। इसे रोमन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा किया गया, इससे पहले ये रोम में कैथोलिक कलीसिया बने, लगभग 606 AD ऐसे ही आसपास, या मेरा मतलब 306 AD। अब हम पाते हैं कि रोमन पागान ने जुपिटर की आराधना की, जो सूर्य देवता था और उन्होंने अस्तोरेत की आराधना की जो चंद्र देवता था, या तो माँ वो स्वर्ग की माता थी, तो इसे वहाँ लाने के लिए उन्होंने अस्तोरेत या देवता स्वर्ग की माता नहीं रही थी और उसने अपने आप को मरियम में प्रतिबिंबित किया था, इसलिए ये अब भी मूर्ति पूजा बनी हुई है जो मसीहत को मूर्ति पूजक से जोड़ रहे हैं।
Then also, and they suffered or worshipped and respected the birth.
बाद में और उन्होंने अनुमति भी दी या आराधना की और उनके सूर्य देवता के जन्मदिन को आदर दिया जो जुपिटर था। जब ये सूर्य दिसंबर के 1 से लेकर दिसंबर के 25 तारीख तक ये नहीं बदलता है, ये उसके मकर राशि से होकर गुजरता है। और कुछ भी हो, मेरे पास अखबार का एक टुकड़ा है, मैं आपके लिए किसी समय पढ़ना चाहूंगा जिससे आपको झटका लगेगा। आप उस बारे में बात करते हैं जो उस दिन यहाँ नीचे नदी पर घटित हुआ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो यरूशलम से जांच में परिणाम आ रहा है, इसे साबित करता है। अभी कुछ हफ्तों पहले एक अखबार में आया था कि उन्होंने कुछ तो यरूशलम में पाया है जो सकारात्मक साबित होता है कि वो दूत उसी समय पर यहाँ पर उपस्थित हो रहा था और सेवकाई को आगे भेज रहा था। जी हाँ, देखा, अब इसे कुछ हफ्तों पहले तक कभी भी नहीं जाना गया था, लेकिन यहाँ पर यह अखबार में है। अब ध्यान दें, जब यह इसे पार करता है, यह इसमें होता है। देखो, अब दिसंबर के 21 के बाद तब दिन थोड़ा सा छोटा होता जाता है, हर दिन थोड़ा लंबा होता जाता है, जब तक ये जुलाई के आसपास नहीं आ जाता है, और तब ये फिर से छोटा होना आरंभ हो जाता है, जब तक कि ये उचित रूप में नहीं आ जाता है। और यही बस वो विश्राम करने का समय है। और रोमन पागान ने कहा यह सूर्य देवता का जन्मदिन था, दिसंबर के 1 से लेकर दिसंबर की 21 या 25 तारीख तक वे उस समय के दौरान रोमन सर्कस करते थे, रथों की दौड़ करते थे और इत्यादि। तो ठीक है, फिर वे मसीह या रोमन मसीह उनके सिद्धांतों को दोनों तरह से होने के लिए जोड़ते हैं, दोनों पागान और मसीह के लिए। उन्होंने कहा यदि यह सूर्य देवता का जन्मदिन है, आओ हम बस इसे एक साथ मिलाकर परमेश्वर के पुत्र का जन्मदिन कर देते हैं। वहाँ पर आपकी दिसंबर की 25 तारीख आपके मास के लिए है, क्राइस्ट मास। ओह, क्या ही बेकार बात है, देखा। अब जोड़ करने के लिए क्यों? आप कहते हैं क्या कोई और दिन नहीं करेगा? हाँ, लेकिन क्या मसीह को पागान के साथ जोड़ना वो उसी चीज को खत्म करने के लिए आता है? वे उसे फिर से इसके साथ वापस जोड़ते हैं। देखा, यही वो चीज है जो गलत है। और सांता क्लॉस, कोई तो जर्मनी में क्रिस क्रिंगल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति है जो क्राइस्ट मास के दिन पर यहाँ वहाँ जाकर बच्चों को उपहार देता था। वह एक कैथोलिक था और उन्होंने उसे एक संत बना दिया। अब यह संत निकोलस है। देखा, मैं बेहतर कि आप इस बात को कैसे भी जानते हैं। देखो, हमने उन्हें कलीसिया कालों में पाया है। लेकिन आज सुबह जो मैं कहना चाहता हूँ वो यह है कि इस आने वाले क्रिसमस के दिन हम देखते हैं कि संसार बेहतर परिस्थिति में नहीं है जैसे ये 19 या 2000 वर्ष पहले था जब मसीह आया था। इसमें कोई फर्क नहीं है, बस लगभग उसी स्थिति में है जैसे ये तब था, वैसे ही ये अब है। यदि मैं एक पाठ से निष्कर्ष को निकालता हूँ या एक विषय की जो मैं कहने जा रहा हूँ वो होगा संसार का टूटकर बिखरना। जब मसीह 900 वर्ष पहले क्रिसमस पर आया, संसार टूटकर बिखर रहा था। हर एक चीज प्रदूषित के अंदर आ गई थी। धार्मिक संसार प्रदूषित हो गया था। रोमन संसार नैतिक रूप से उसके सबसे निचले स्तर पर था। ओह, संसार की अनैतिकता। उन यहूदियों ने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया था और उनके पवित्र धार्मिक उत्सव को मनाते और इसे एक अनुष्ठान रीति रिवाज बना दिया है। परमेश्वर उनसे निकल गया था और वे जान गए थे कि कुछ तो हुआ था जो सारे संसार ने किया था, क्योंकि ताकि इसे एक साथ रखे, यह टूटकर बिखर रहा था। और कुछ तो इसे एक साथ बनाए रखता है। हर एक राष्ट्र अपने तरीके से किसी बात के लिए देख रहा था या किसी को तो देख रहा था ताकि आकर इसे एक साथ पकड़ कर रखे। क्या यह आज की तस्वीर नहीं है? मैं संसार को नहीं जानता, ये किसी चीज को देख रहा है जो इसे एक साथ पकड़े रखे। यह बिल्कुल ऐसा ही 2000 वर्ष पहले था।
2000 years ago was looking for a Messiah.
वो संसार 2000 वर्ष पहले जो एक मसीहा के लिए देख रहा था ताकि चीजों को एक साथ पकड़े रखे, लेकिन 2000 वर्ष पहले परमेश्वर ने संसार को एक मसीहा दिया, क्योंकि अगर हम कुछ तो अपेक्षा करते हैं और किसी बात के लिए देख रहे हैं, परमेश्वर इसे हमारे लिए भेज देगा। और अब संसार 2000 वर्षों के बाद उसी परिस्थिति में वापस आ चुका है। यह 2000 वर्ष पहले था। वे टूटकर बिखर रहे हैं। वे राष्ट्र वहाँ कहीं भी कोई नहीं, कोई बुनियाद नहीं है। साम्यवाद, कैथोलिक मत, प्रोटेस्टेंट मत, राजनीति, नैतिकता, सब कुछ टूटकर बिखर चुका है और वे एक मसीहा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
But here's what I want to say. If he would come,
लेकिन यह है वो जो मैं कहना चाहता हूँ। यदि वो आता है तो क्या हम उसे ग्रहण करेंगे या हम वैसे ही करेंगे जैसा उन्होंने किया? क्या हम उसे अस्वीकार कर देंगे? क्या हम जानते हैं कि हमें वास्तव में क्या चाहिए? कभी कभी हम चाहते हैं हम अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना करें, और कभी कभी हमारी इच्छाएं हमारी आवश्यकता नहीं होती है। हमें यह जानना जरूरी है, जो हमें समझ में नहीं आता कि हमारी क्या आवश्यकता है। हम सोचते हैं हम वो करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रतिज्ञा की है और वो इसे करेगा। अब क्या हो मेरा छोटा जोसेफ जो 7 वर्ष का है मेरे साथ शिकार करने के लिए जाना चाहे और मेरी स्वचालित बंदूक को लेने के लिए रोने लगे और चीखने लगे जो गोलियों से भरी हुई बंदूक है, पिताजी मैं एक खरगोश को मार सकता हूँ, तो मैं उसे ऐसा करने नहीं दे सकता हूँ। फिर भी वो सोचता है कि उसे वो बंदूक चाहिए, लेकिन मुझे उसके बारे में उससे ज्यादा पता है। और क्या हो यदि आपका 1.5 वर्ष के उम्र का छोटा बच्चा आपको तब धारीदार रेजर के साथ दाढ़ी बनाते हुए देखे और उस रेजर के लिए चिल्लाए और रोए? अब उसने आपको दाढ़ी बनाते देख लिया है, वो वही चीज को करना चाहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। अब आप उसे इसे नहीं देंगे, क्योंकि यदि आप एक समझदार सोच वाले पिता हैं, तो आप इस तरह की चीज नहीं करेंगे, लेकिन आप इसे उससे दूर रखेंगे। और फिर बहुत सी बार हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो उस बात के विपरीत होता है जिसे परमेश्वर जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है, इसलिए वह हमें इसे नहीं देता है। और वे एक मसीहा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वे एक मसीहा को चाहते थे, लेकिन यहाँ है वो कहाँ पर है? वे उसे उस तरह से चाहते थे जिस तरह से वे चाहते थे, और परमेश्वर ने उसे उस तरह से भेजा जिस तरह से वो उसे चाहता था, और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, और वे आज फिर से ऐसा कर रहे हैं। आज भी उसी बात को करते हैं, वे इसे फिर से अस्वीकार कर देंगे। वे अब फिर से उसी बात को करते हैं जैसा उन्होंने तब किया। क्यों? उसी कारण के लिए, वही कारण। वो तब आया और हम जानते हैं कि वो आ गया है। वो आया और उनके लिए, लेकिन वो उस रीति से नहीं आया जिस तरह से उन्होंने उसके आने के लिए चाहा था। और यदि परमेश्वर हमें आज कुछ तो भेजता है, हमें इसके लिए बाहर बुलाता है और कलीसिया, और जब परमेश्वर इसे भेजता है, हम इसे नहीं चाहते हैं। यह हमारे सांप्रदायिक स्वाद के अनुसार नहीं आता है, यह हमारे धर्म शिक्षा की धारणा के अनुरूप नहीं आता है कभी कभी, लेकिन ये वही चीज होती है जिसके लिए हमने प्रार्थना की थी, वही विनती जिसके लिए हमने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की थी। परमेश्वर ने इसे हमारे लिए भेजा और हम इसे अस्वीकार कर देते हैं। हम परमेश्वर से एक क्रिसमस के उपहार को चाहते हैं, लेकिन हम इसे उस तरह से चाहते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं। परमेश्वर इसे उस तरह से भेजता है हमें यह चाहिए। वो जानता है कि राष्ट्र को क्या चाहिए, वो जानता है कि कलीसिया की क्या आवश्यकता है, लेकिन हमें लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन वो वास्तव में जानता है कि यह क्या है। अब जैसा कि मैंने कुछ मिनट पहले कहा था, हम फिर से इस क्रिसमस में आते हैं। संसार टूट कर बिखर रहा है। आइए कुछ चीजों के नाम को ले जो मैंने यहाँ संक्षेप में लिख कर रखा है।
Never was in a lower state, hardly. I got an article here.
संसार के अनैतिकता की ओर देखें, शायद ही कभी भी ऐसी निचली अवस्था में नहीं था। मेरे पास यहाँ एक लेख है जिसके मैं केवल इसके कुछ शब्दों को पढ़ना चाहूंगा। यह एक स्टैंडर्ड बैरियर नामक अखबार में मिला जो अफ्रीका का अखबार है। कहता है, लज्जा की मृत्यु।
Modesty, that beautiful quality that God has placed in the human family to safeguard its moral standard.
नारी की लज्जा वो सुंदर गुण है जिसे उसके नैतिक स्तर की रक्षा के लिए परमेश्वर ने मनुष्य के परिवार में रखा है, जो आज खत्म होती जा रही है। जैसे निर्दोष महिलाओं और लड़कियों ने फैशन की देवी के सामने अपने घुटनों को झुका दिया है और सबसे अत्यधिक शर्मनाक आधुनिक शैलियों के लिए पुष्टि करने में वे हिचकिचाती नहीं है। मेरे पास यहाँ इस बारे में एक पन्ना है, मैंने कैसे इस तरह की कभी भी बात नहीं सुनी। और यौन आकर्षक करने को ये माना जाता है कि मसीहों और गैर मसीहों दोनों के बीच में ये वैध है। जैसे ये हमारे बहुमूल्य भाई अर्गन ब्राइट और मैं इस भोर को सड़क पर आए, उस विषय के बारे में बात कर रहे थे, एक लड़की को पाना मुश्किल है जो शर्म के लिए पर्याप्त विनम्रता के साथ हो। वे बहुत सारे अश्लील चुटकुले को सुनते हैं और गंदगी, और क्यों आप उन्हें शर्म दिलाने के लिए कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जब कुछ वर्ष पहले जब मैं एक लड़का ही था, एक छोटी सी गलत बात, उनके चेहरे रंगे हुए होते, एक छोटी सी लड़की वहाँ से गुजरती और एक और छोटी लड़की जो घुटने के ऊपर छोटे से स्कर्ट को स्कूल में पहनकर आती है, और मैं वहाँ पर खड़ा था, बात कर रहा था, और जब उस लड़की ने उसकी ओर देखा और इस छोटी लड़की को जो घुटने के ऊपर स्कर्ट को दिखा रही है, उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया और वह मुझसे दूर चले गई। एक 16 वर्ष की लड़की, क्यों, क्या ही, यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया गुण है हमारी नैतिकता की रक्षा करने के लिए। तब आप क्या सोच सकते हैं कि मैं क्यों इस तरह की बेहुदा बातों के खिलाफ पुकार उठता हूँ, जैसे आज हो रही है। अपने आप को मसीह कहते हैं और महिलाओं का कपड़े पहनना और व्यवहार करना और पुरुषों का सिगरेट पीना और जो कुछ भी है वो इस प्रकार से करते जाते हैं, और सेवक लोग समझौता करते हैं, और यहाँ तक वे चाहेंगे भी नहीं कि आप पुलपिट पर आकर इस तरह की बातों के विरोध में प्रचार करें। सोचता हूँ क्या हम आज बहुत कुछ वैसा ही नहीं कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने 2000 वर्ष पहले किया था। याद रखें, जब इसराइल ऐसा करते ही जा रहा था, परमेश्वर ने एक यशाया को खड़ा किया। जब वो समय बीत गया और उन्होंने फिर से आरंभ कर दिया, तो वहाँ पर उसने एक यर्मिया को खड़ा किया, और परमेश्वर अपने बातों को करने का तरीका नहीं बदलता है। वह अनंत परमेश्वर है, वह नहीं बदल सकता है। उसका जो इसे करने का पहला विचार है, हमेशा ही उसी तरह बने रहना है। आज हमें जो चाहिए वो मसीहा के मसीहत के साथ अभिषेक किया गया संदेश है, लेकिन क्या वे इसे ग्रहण करेंगे? वे इसके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या वे इसे ग्रहण करेंगे? नहीं श्रीमान, वे इसे ग्रहण नहीं करेंगे। वे इसे क्रूस पर चढ़ाते हैं जैसे उन्होंने प्रथम स्थान पर किया था। मनुष्य का हृदय भरमाया जा रहा है। नैतिकता, राष्ट्रीय झगड़े। अब संसार कब तैयार हुआ था कि नैतिकता में बिखर रहा हो जितना ये आज है, और किसकी अनुमति से निर्धारित किया गया है? हम अमेरिकियों ने। जब मैं यहाँ रोम के सैन एंजेलो में था, ज्यादा समय नहीं हुआ, सैन एंजेलो के पास मृत लोगों का तहखाना है। वहाँ अमेरिकी महिलाओं के लिए एक सूचना थी, मृत लोगों के तहखाने में प्रवेश करने से पहले कृपा मृतकों के सम्मान के लिए कपड़े पहन ले। एक धार्मिक राष्ट्र जिसे एक परमेश्वर का भय करने वाला राष्ट्र होना चाहिए। हम दूसरे लोगों के पूर्व अनुभव पर जी रहे हैं। हमारे पूर्वज जो मसीह थे, राष्ट्रीय झगड़े संसार में कभी ऐसा समय नहीं रहा है कि यह संसार में राष्ट्र में टुकड़े होकर और बिखरना नहीं हुआ था जैसा कि यह अभी है। क्यों आप सांप्रदायिक और अखबारों को देखते हैं और टिप्पणी करने वाले और अनुमान लगाने वाले और इत्यादि बमों के लिए कह रहे हैं, वे जो कर सकते हैं, केवल कोई भी छोटा राष्ट्र सारे संसार को नष्ट कर सकता है और उनके बीच कोई शांति नहीं है। आप उस तरह से शांति को नहीं ला सकते हैं। शांति से भाईचारा राजनीति के द्वारा नहीं आ सकता है, यह मसीह के द्वारा आता है। वे इसे ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। मैं यहाँ कुछ चीजों को कैसे बोल सकता हूँ? हमारी खुद की राजनीति में भ्रष्टाचार है। क्यों? राजनीति पूरी तरह से सड़ चुकी है। आप एक रात रेडियो यंत्र में सुन रहे थे, मुझे लगता है या सोचता हूँ यह लुइस विले से घंटे या दो घंटे का प्रसारण था, जहाँ से वे देश भर में जुड़ते हैं और वे बता रहे थे। वे कभी तो एक बार अलग अलग विषयों पर बताते हैं और उन्होंने इस बार श्रीमान निक्सन पर बात की, जो राजनीति से हटकर दूर जा रहे हैं। जब वे अपनी दौड़ में हार गए लॉस एंजलिस में, जो राजनीति की दौड़ थी, या कैलिफोर्निया में, और वो क्या वो वापस कभी आएंगे? और जब प्रसारण हुआ दो या तीन घंटों के बाद, मैंने इसे सुना था जब ये वहाँ से भाई चार्ली के घर में यहाँ आ रहा था, और मैंने इसे सुना जो ऊपर आ रहा था भाई वुड, और मैं रेडियो पर थे और ये पता लगाने के लिए आया कि निक्सन, जो यहाँ तक कि सभी पूरी देश पर है जहाँ तक प्रसारण जाता है, मिसिसिपी से पेंसिल्वेनिया तक, कि उन्होंने श्रीमान कैनेडी को हराया था, और लोग फोन कर रहे थे और व्यक्त कर रहे थे लगभग चार में से एक वोट। तब एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहा, यदि आपके पास चुनाव करने की मशीनें नहीं होती थी तो वो राष्ट्रपति बनता। आप वहाँ पर हो। राजनीति धोखाघड़ी जो दोनों तरफ से सड़ चुकी है, मैं उसे दोष नहीं देता। मैं भी अपने हाथ ऊपर कर दूंगा और उन घिनौनी चीजों को भ्रष्ट होने दूंगा। यह किसी भी तरह से संसार के साथ जा रहा है, लेकिन अपने हाथों को आगे मसीह की ओर पकड़ो और कहो, मैं यहाँ हूँ प्रभु। राष्ट्रीय झगड़े, और अब जहाँ आपको ये सोचना चाहिए कि उन्हें एक साथ बने रहने के लिए यत्न करना चाहिए, ये बिल्कुल अलग हो गए हैं। इसी तरह से ये था आने वाले समय में 2000 वर्ष पहले, जब संसार टूटकर बिखर रहा था। आज उसी परिस्थिति के नीचे ये टूटकर बिखर रहा है। और फिर कलीसिया का भ्रष्टाचार, ओ प्रभु, धार्मिक भ्रष्टाचार, ओ बाइबल के 2000 वर्षों के बाद संसार को देखना भद्दा है, और पवित्र आत्मा यहाँ पृथ्वी पर है, और आज ये टूटकर बिखर रहा है उतनी ही बुरी तरह से जैसे 2000 वर्ष पहले था। धार्मिक भ्रष्टाचार, राजनीति ने धर्म में प्रवेश किया है और धर्म ने राजनीति में प्रवेश किया। इस प्रकार की परिस्थिति को देखना एक भयानक बात है। मैं जानता हूँ ये है। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, आपको या क्रिसमस के समय पर इस तरह की एक तस्वीर को हमारे लिए नहीं बनाना चाहिए। आपको चाहिए कि सत्य को जाने जो आपको जानना चाहिए। अब कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर आशीष देगा, लेकिन उन आशीषों को कुछ निश्चित परिस्थितियों में आना है। कुछ मांगे होती हैं जिसे आपको पूरा करना अवश्य है, और यदि आप उन मांगों को पूरा नहीं करते हैं, तब परमेश्वर की आशीषें और प्रतिज्ञाएं आपके लिए बेअसर होती हैं। परमेश्वर ने इसराइल से पूरा करने की प्रतिज्ञा की जब तक उन्होंने धार्मिक पर्वों और चीजों को पवित्रता और सच्चाई के साथ बनाए रखा। परमेश्वर ने उन्हें पूरा किया, लेकिन जब वे बस इसे ऐसे करने लगे जैसे ये पारिवारिक रीति रिवाज हो, फिर परमेश्वर ने अब इसे और करने से अस्वीकार किया। उसने कहा, उन्होंने उसके मुंह पर इनकार कर दिया। तो आज भी वही बात है कि हमें वापस जानना होगा कि उस चीज की सच्चाई क्या है। कलीसिया में राजनीतिक झगड़े, हम आज 900 अलग अलग मसीहत के संप्रदायों के साथ खड़े हैं, हर एक दूसरे के साथ लड़ रहा है। तो ठीक है, ऐसा है, ये इतना बुरा नहीं था जब वो आया था। वह उनमें केवल चार या पांच विभाग थे, फरीसियों और सदूकियों और इत्यादि, लेकिन अब हमारे पास 900 और ऐसे ही कुछ है। क्यों? ये कलीसिया जो एक खराब परिस्थिति में है, इस क्रिसमस पर उससे भी ज्यादा जो 1900 वर्ष पहले थी, अब यह एक बदतर परिस्थिति में थी। सांप्रदायिक झगड़े इस सब का क्या कारण है दोस्तों? क्योंकि उस राजनीतिक ने पवित्र आत्मा की जगह को ले लिया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को लेना चाहता है और कलीसिया को विजय के लिए नेतृत्व करे, लेकिन शिक्षा संबंधी कार्यक्रम और राजनीतिक कार्यक्रम और संस्था और संप्रदायों ने इसे 900 अलग अलग दिशाओं में नेतृत्व किया है, तो कलीसिया का कोई नहीं। यही है जो कलीसिया कहलाती है। मेरा मतलब सच्ची कलीसिया से नहीं है, वो अब भी ठीक धधकती आग पर बढ़ रही है। ओ हाँ, फिर भी वो वैसी बनी रहती है। लेकिन जिसे संसार कलीसिया कहता है, ऐसा दिखाई देता है कि ये एक ऐसा ढांचा होगा जो संसार को एक साथ बनाए रखता है, जो बनावट है, जिसे हम आज नैतिकता और संसार की चीजें कहते हैं, यह प्रदूषित हो गई है। इसके सूत्र सड़ चुके हैं और स्वार्थपन के दीमक ने उसी बुनियाद को बाहर से लेकर अंदर तक खा लिया है। यह निश्चित रूप से सत्य है। अब बस इस परिस्थिति में यह कहा गया था कि यह दूसरा तिमोथियुस 3 को लेता है, ठीक घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे और इत्यादि। तब यदि हम राजनीति को इस परिस्थिति में देखते हैं जो कि उन राष्ट्रों में है, और हम कलीसियाओं को उसके भ्रष्टाचार में, उसके संप्रदाय में देखते हैं, और फिर भी हम चाहते हैं कि परमेश्वर उन चीजों में हमारे पास आए। परमेश्वर हमारे साथ उस गंदे नाले में नहीं आएगा, उन चीजों के नीचे जिसे हम चाहते हैं कि वो वहाँ पर आए, वो ऐसा नहीं करेगा। वो पवित्र है और वो जानता है कि अच्छा क्या है। यदि हम पुकारे तो वो हमें उत्तर देता है, और जब वो उत्तर को भेजता है तो हम उसे अस्वीकार कर देते हैं। हम उसे उस तरह से चाहते हैं जैसे इसे हम चाहते हैं, और हम परमेश्वर को पाने की कोशिश करते हैं और खुद को बचाने की कोशिश करते हैं उसी चीज के द्वारा जो हमें साबित हुई है। कलीसिया कृपा से सुने, यही वो चीज है जो ईश्वरीय रूप से हमें साबित हुई है। यही हमें भ्रष्ट कर देता है, और फिर भी हम खुद को बचाने के लिए हम उसी सिद्धांतों की ओर देखते हैं। वचन की ओर वापस आओ, यही है जो मसीहा कहेगा। अब लेकिन हम राजनीति की ओर देखते हैं, हम राष्ट्रीय संसार के लिए यत्न करते हैं, हम इसे राजनीति के जरिए से बचाने की कोशिश करते हैं। कलीसिया चाहती है हमारा संसार राजनीति के जरिए से, कलीसिया का संसार वो बचाया जाए। इस प्रकरण ने समय दर समय संसार को प्रभावित किया है, हमेशा ही मूसा के समय से लेकर वही बात राजनीति शासन करने की कोशिश कर रही है, और ये भ्रष्ट है। वहाँ किसी भी तरह से मनुष्य इसे नहीं कर सकता है। आरंभ से ही एक मनुष्य में कुछ भी अच्छा नहीं है, यही वो कारण है, उसे मरना है। और जब हम इस संसार को इस परिस्थिति में देखते हैं, ऐसा दिखेगा कि हर युग में यह टूट कर बिखर रहा है। जब संसार उस परिस्थिति में आ जाता है, लोग प्रार्थना करते हैं, ओह, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी कहता है, यह क्या था, 10 मिनट या 1 घंटा या ऐसा ही कुछ प्रार्थना के लिए कहता है, इससे कुछ भी भला नहीं होगा। हमें जो चाहिए वो प्रार्थना नहीं है, लेकिन एक पश्चाताप करना है, वापस मुड़ना है, दूर होना, क्या करना, परमेश्वर की ओर वापस आ जाओ, बल्कि मेरी तसल्ली को परमेश्वर के वचन पर और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पर, मसीह की उपस्थिति पर खड़ा होना है, उसकी तुलना में जो राजनीति या सारी सुरक्षा या कलीसिया आपको कभी दे सकते हैं, निश्चय रूप से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह खड़ा रहेगा। हमारे पास ऐसा राष्ट्र भी नहीं होता, हमारे लिए बेहतर राष्ट्र होता यदि हमारे पास अभी परमेश्वर का राष्ट्र होता। तो परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर हमेशा उत्तर देता है और उन्हें राहत को भेजता है, लेकिन वे इसे ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। वो परमेश्वर उत्तर देता है। जब राष्ट्र हर समय इस तरह की परिस्थितियों में पहुंचता है, जब संसार, मेरा मतलब, इस परिस्थितियों में पहुंचता है, बिखर रहा होता है, तब परमेश्वर हमेशा ही उनकी प्रार्थना का उत्तर देता है। उनके लिए भविष्यवक्ता या कुछ तो भेजता है, कुछ शक्तिशाली भविष्यवक्ता को भेजता है ताकि इसे विस्फोट करे, लेकिन वे उसे नहीं सुनते हैं। वो क्या करते हैं, उसे कब्र में डाल देते हैं। यीशु ने कहा, तब तुम में से कौन क्या तुम्हारे पूर्वजों ने वहाँ भविष्यवक्ताओं को कब्र में नहीं रख दिया था और तब सफेद और अब उन्हें सफेद बनाते हैं और उनकी समाधि को बनाते हैं और तुम ही वो एक हो जो उन्हें वहाँ पर डालते हो? आप में से वो कौन है? वे सहायता के लिए पुकारे, परमेश्वर ने इसे उनके लिए भेज दिया और उन्होंने इसे ठुकरा दिया। फिर क्या परमेश्वर दोषी है या लोगों का दोष है? यह लोगों का दोष है निश्चित रूप से। जब यीशु का जन्म हुआ था वो संसार, जैसा कि मैंने कहा, बिखर रहा है। इसे राजनीति के द्वारा नियंत्रित किया गया और राजनीति उन दिनों में भ्रष्ट थी। राष्ट्रीय कलीसिया भ्रष्ट थी। रोमी और यूनानी लोग एक अभिषेक मसीहा के लिए देख रहे थे। ग्रीक और यूनानी लोगों का संभवत है संसार के लिए सबसे अच्छी भूमिका थी और वे उस एक से लड़ रहे थे। उनके बीच एक दूसरे से लड़ाई हो रही थी, इसलिए वे किसी अभिषेक मसीहा के आने के लिए देख रहे थे। और वे यहूदी, वे चाहते थे कि एक मसीहा आए। और वे रोमी कुछ बड़े राजनेता को देख रहे थे जो रोम में खड़े होकर यूनानी को हाथ में ले सके और उन्हें बताए कि इसे कैसे करना है और रोम संसार पर शासन करे। यूनानी एक बड़े राजनेता को खड़ा करना चाहता था, अभिषेकित राजनेता, एक मसीहा जो कहे हम उन रोमन और यहूदियों को हाथ में ले लेंगे और उन बाकी के लोगों को। देखो, यही है वो जिसके लिए वे देख रहे थे। यदि यह आज की तस्वीर नहीं है तो मैं नहीं जानता यह क्या है। ठीक है, राजनीति एक अभिषेक मसीहा को चाहता था और यहूदी एक मसीहा के लिए देख रहे थे और वे उस एक को चाहते थे जो वहाँ पर आए, वैसे नहीं जैसे उन्हें मिला। वे एक जनरल को चाहते थे जो वहाँ आकर धरती पर से उनके लिए रोमी और यूनानी दोनों को रौंद डाले। इसी प्रकार के मसीहा को वे चाहते थे। वे उस तरह के मसीहा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। रोमी लोगों ने कहा हमारे लिए एक को भेजे, आइए हम उस एक अभिषेक व्यक्ति के लिए किसी को वोट दें। वो एक व्यक्ति जो समझता हो, वह राजनीति में एक निपुण हो, वो बिल्कुल सही रीति से यूनानी और बाकी के संसार को हाथ में लेने की रणनीति को जानता हो। बाकी का संसार पुकार रहा था हमारे लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति को भेजे जो प्रतिभाशाली बुद्धि के साथ अभिषेकित हो, कि वो जानता हो कि बाकी संसार को कैसे हाथ में लेना है। अब यदि यह आज की तस्वीर नहीं है तो मैं नहीं जानता। और कलीसिया पुकार रही है हमारे लिए एक जनरल को भेजे कि वो उतर कर आए और जो हम में से हर एक को हथियार में डाल दे और बताए कि तलवार का उपयोग कैसे करें और हमें रणनीति को बताए और हम धरती पर से रोमी, यूनानी और बाकी को रौंद डाले। इसी तरह से वे करना चाहते हैं शासन करने के लिए। यही वो शक्ति है। आज भी ऐसी बात है जो हम कलीसियाओं में पाते हैं। आप जो मेथोडिस्ट हैं, आप एक मसीहा के लिए देख रहे हैं। वो किस तरह का एक मसीहा है? ना ही वो जो परमेश्वर आपको भेजेगा। आप बैप्टिस्ट, आप उस एक मसीहा के लिए देख रहे हैं। आप असेंबली ऑफ गॉड, आप एक मसीहा के लिए देख रहे हैं। आप जो वननेस है, आप उस एक के लिए देख रहे हैं। यह सही है, लेकिन आप किसके लिए देख रहे हैं? उसी चीज के लिए जो राजनीतिक संसार देख रहा है। कोई महान गणित का प्रतिभाशाली, कोई बड़ा विद्वान जो डीडी पीएचडी के साथ है, जो आपके कलीसिया में आए, जो उठाकर इन अन्य संप्रदायों को बाहर निकाले और सबको आपके साथ शामिल कर ले। कुछ लोग जो फुसलाने में इतने अच्छे होते हैं, वो इस तरह से हाथ में ले सकता है। आप क्रिसमस के समय यहाँ एक मसीहा के लिए पुकार रहे हैं। उन्हें क्या मिला? वे इसे चाहते थे, वे इसे हाथ में लेना चाहते थे। आज संसार इसे हाथ में लेना चाहता है, कलीसिया हाथ में लेना चाहती है, हर एक संप्रदाय। लेकिन देखो, परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? वे एक प्रतिभाशाली सैन्य को चाहते थे, वे एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक को चाहते थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें एक मेमने को देता है, एक बालक। क्या ही विपरीत बात है! आपको लगता है कि वे उस रोते हुए बालक को स्वीकार करेंगे, लेकिन यही है वो जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। परमेश्वर आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार देता है। निश्चय ही उसके पास, उनके पास एक बालक था जब वे एक जनरल को चाहते थे, लेकिन उनके पास एक बालक था, नम्र, दीन, हालांकि उनकी आवश्यकता को जानता था। वह कभी भी राष्ट्रीय या एक कलीसिया का राजनेता बनने के लिए नहीं आया। और यदि मसीहा आज आता है तो वह एक राष्ट्रीय या कलीसिया का राजनेता बनने के लिए नहीं आएगा। और यदि हम ऐसे व्यक्ति के लिए पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए छुटकारे को भेज देगा, लेकिन हमें इसे उसी तरह से ग्रहण करना है जो वो इसे भेजता है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उसे उस तरह से नहीं चाहा। कलीसिया आज पुकार रही है, हे स्वर्गीय पिता, क्या आप कृपा हमारे लिए यीशु को भेजेंगे, कृपा भेजेंगे? और जब पवित्र आत्मा अंदर आने लगता है, ओ हम इसे नहीं चाहते हैं, देखो तो तुम कहोगे, ओ हम नहीं, इस व्यक्ति को नहीं चाहते कि हमारे ऊपर शासन करे, ओ मैं ये सुनना नहीं चाहता, नहीं, ओ मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, मेरी संस्था उस पर विश्वास नहीं करेगी। तो आप एक मसीहा को नहीं चाहते हैं, आप एक अभिषेक को नहीं चाहते हैं। यदि परमेश्वर एक मसीहा भेजता है तो वह बिल्कुल बाइबल के वचन दर वचन अनुसार होगा, ठीक उसी तरह से जैसे वो पहली बार था। संसार की पुकार, जब हम राजनेता और बाकी के लोगों को देखते हैं कि कलीसिया से उसी जीवन को बलपूर्वक बाहर कर रहे हैं और हम पुकारते हैं और परमेश्वर इसे हमारे लिए भेजता है, तब हम इसे ग्रहण नहीं करते। यह सही है, हम इसे नहीं चाहते, नहीं, यदि यह हमारे सांप्रदायिक धारणाओं से नहीं मिलता है तो हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते। समझे? ओह, क्या आप नहीं देखते कि वास्तविक क्रिसमस लोग इसे नहीं चाहते हैं? वे परमेश्वर के भेजने के तरीके को नहीं चाहते हैं। वे किसी के लिए तो देख रहे हैं, लेकिन वे इसे नहीं चाहते हैं। अब परमेश्वर ने उनके लिए भेजा जिस दिन वे पुकार रहे थे, ना ही एक प्रतिभाशाली फौजी को, ना ही एक बड़ा जनरल जो पटुके और हथियार के साथ नीचे आ रहा है और एक अलौकिक तलवार या भाला लिए हुए हो जिससे वो जवाब दे सके और रोमी और यूनानी और बाकी के लोगों को दौड़ाकर समुद्र के अंदर ले जाए और उन्हें फिर से डुबा दे। उसने उनके लिए कुछ ऐसा भेजा, हालांकि उसने कहा उसने ऐसा एक बार मूसा में किया था, लेकिन तब उन्हें इसकी आवश्यकता थी। लेकिन उन्होंने उनके लिए एक उद्धारकर्ता को भेजा और वे इसे नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वहाँ वे बचाए गए थे। देखा, आज कलीसिया के साथ इसी तरह से है। इस क्रिसमस के समय पर इसे पाते हैं, इस सारे क्रिसमस के तड़क भड़क के साथ सांता क्लॉज की रोशनी, पागान के लक्षण और इत्यादि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं के अंदर घुस गए हैं और बिल्कुल उतना ही भ्रष्ट जितना ये हो सकता है। और परमेश्वर उनके लिए एक उद्धारकर्ता को भेजता है। क्यों? वचन के लिए वापस आओ। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का मसीहा, उसका अभिषेक, ताकि उसके कलीसिया को अभिषेक करे और इसे वापस वचन की ओर भेजे। क्या आपको लगता है कि वे इसे चाहते हैं? नहीं श्रीमान, वे इसे नहीं लेना चाहेंगे। वे उससे मुंह को मोड़ देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे हमेशा करते हैं। वो एक उद्धारकर्ता को भेजता है, लेकिन वो एक उद्धारकर्ता तब किस लिए भेजता है? मैं यहाँ पर थोड़ा ऐसा कुछ तो बताना चाहता हूँ जिससे आपको मदद मिलेगी। कुछ पहले से ठहराए गए जो लोग हैं वे इसे ग्रहण करेंगे। वे वहाँ पर थे जब वो पहली बार आया था, वे होंगे जब वो दूसरी बार आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कलीसिया की दुनिया इसके बारे में क्या सोचेगी, कुछ भी, वह इसे व्यर्थ में नहीं भेजता है। कोई तो इसे ग्रहण करेगा, कोई तो इसे पाने जा रहा है, बस ऐसा ही है। लेकिन ना ही राजनीतिक संसार या ना ही राजनीतिक कलीसिया या जो भी हो, लेकिन जब आप पुकार उठते हैं और परमेश्वर इसे भेजता है, कोई तो इसे ग्रहण करेगा। ये सही है। उसने एक उद्धारकर्ता को भेजा, ना ही राष्ट्रों को लताड़कर बाहर करने के लिए। जैसा कि हम सोचेंगे, आज हमें एक ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो खड़ा हो सकता है। अमेरिका एक आदमी को चाहता है जो रूस को दस्तक देगा और इसे नहीं ले पाएगा। रूस का एक आदमी चाहता है जो बाकी संसार को निकालकर और उन्हें चंद्रमा पर लेकर जाए। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए शांति को भेजता है, परमेश्वर हमारे लिए आशा भेजता है। हम इसे नहीं चाहते हैं, ओह कहते हैं हमारे पास शांति हो सकती है, राष्ट्र शांति को चाहते हैं, सच बात है, और उन्हें लगता है उनके पास शांति हो सकती है। जब यूएन एक साथ आ जाएगा तो ठीक है, यूएन इस बात से बहुत दूर है। इस संसार की शांति जो आज उनके पास है, जो एक रबड़ की तरह है, हवा में उड़ता हुआ गुब्बारा, बस उसके अंदर भरी हुई जरा सी हवा इसे जिधर भी चाहे ले जा सकती है। निश्चय रूप से राजनीति का एक केवल छोटा सा बदलाव इसे एक ओर से दूसरी ओर घुमा देता है। यूएन में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह कि इनके अन्य लोगों के नाम को ठेस पहुंच सकती है। वे सोचते हैं कि परमेश्वर में भी विश्वास नहीं करना है। क्या यह संतुलित करना नहीं है? बस फिर भी फूल जाते हैं। और एक बात, एक गुब्बारा किसी से भी नहीं फूल जाएगा। आमीन। और इस संसार की कहलाने वाली शांति यूएन और इत्यादि के द्वारा उड़ जाएगी। सही है, इसमें कोई भी शांति नहीं है। मनुष्य के बनाए पराक्रम से शांति नहीं मिल सकती है, यह वहाँ पर नहीं है। हर एक हवा के झोंके से उठा लिए जाते हैं। कलीसिया एक को चाहती है, वे चाहते हैं उनकी शांति के बारे में हर हवा के सिद्धांत के साथ वे भी घूम जाते हैं, हर एक यहाँ वहाँ घूम जाते हैं। उनमें से एक कहता है, ओह मैं सोचता हूँ कि हमें बस इतना करना है। आप सोचते हैं, आप कोई सोच को नहीं आने दे, परमेश्वर ने उसके विचार को व्यक्त किया है। आपको सोचने का कोई अधिकार नहीं है। वो मन जो मसीह में था आप में हो, और उसने इरादा रखा और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। उसने कहा, यदि मैं परमेश्वर के कामों को नहीं करता तो मुझ पर विश्वास मत करो। समझे, आप कोई सोच को आने नहीं दें। वही वो एक है जो सोच रहा है, आप में उसका मन होने दो। आप केवल वही सोचे और वो उसका वचन है। आप भला कैसे अलग सोचेंगे? उसने हमारे लिए उसके विचारों को व्यक्त किया है, लेकिन हम हमारी सोच को करना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। मैं कल एक प्रिय बुजुर्ग प्राण के साथ गाड़ी में जा रहा था वहाँ ऊपर बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना करने, और जब हम बीमार बच्चे के पास गए तो परिवार नहीं चाहता था कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। यह तो केवल मनुष्य के विचार थे। हालांकि सड़क पर इस महिला ने कहा, जो लगभग 81 वर्ष की एक बूढ़ी महिला थी, होशियार प्रतिभाशाली महिला, बहुत ही अच्छी, लेकिन उसने कहा, मैं सोचती हूँ कि क्या होना चाहिए। देखो, मैं सोचती हूँ कि सारी कलीसियाओं को एक साथ आना चाहिए और एक होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है जो शैतान सोचता है, लेकिन परमेश्वर उसकी कलीसिया के लिए संसार की चीजों से एक अलगाव को चाहता है। वह नहीं चाहता कि ये कलीसिया की राजनीति के साथ मिश्रित हो, समझे। और क्या होता है यदि परमेश्वर ने संसार के लिए एक मसीहा को भेजा? और यही है, वो महिला केवल सारे संसार के विचारों को सोच रही थी। कलीसिया का संगठन क्या है सिवाय उन्हीं विचारों के? विश्व परिषद कलीसिया क्या है सिवाय एक उद्देश्य के, ताकि उसी विचारों को प्राप्त करे? क्या सही है? तो फिर उस महिला ने केवल उसी संसार के विचारों को व्यक्त किया। लेकिन यहाँ बाइबल में परमेश्वर के विचार हैं। हमें कोई अधिकार नहीं होता कि उससे अलग विचार को ले। यही परमेश्वर के विचार हमारे लिए व्यक्त हुए हैं। हम देखें संसार को टूटकर बिखरता देख रहे हैं, और हम किसी चीज के लिए पुकार रहे हैं, आइए इसे ग्रहण करें। अब यदि इसे ग्रहण करते हैं और यह हमें राजनीतिक में ले जाने की कोशिश करता है, तो यही वो बात है जो हमें भ्रष्ट कर देती है। मेरे पास इस क्रिश्चियन बिजनेसमैन के राष्ट्रीय नेता को बताने के लिए कुछ है। यह लोगों का एक अच्छा झुंड है, लेकिन यदि उन्होंने गलत तरीके से आरंभ किया है, वे बाकी उनके जैसे चूर चूर हो जाएंगे, एक संप्रदाय बन जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें और इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। मुझे जाना होगा, मुझे उसके लिए परमेश्वर से एक दर्शन मिला है, समझे। और यदि वे नहीं मुड़ते हैं, यदि वे आगे बढ़ते रहते हैं, तो वे एक संगठन में आ रहे हैं, और जब वे ऐसा करते हैं, परमेश्वर इनके साथ और नहीं होगा। ये सही है। देखो, मनुष्य एक साथ नहीं आ सकते हैं जब तक वे अपने विचारों को लेने की कोशिश करते हैं। यही वो कारण है कि परमेश्वर व्यक्तिगत को लेता है, समझे। परमेश्वर व्यवहार नहीं करता और एक संप्रदाय के साथ कभी भी व्यवहार नहीं किया था। इतिहास में कोई जगह नहीं है कि ऐसा उसने कभी किया हो। वो व्यक्तिगत के साथ व्यवहार करता है, एक मनुष्य से। यह सही है। लेकिन हम एक मनुष्य के झुंड को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, यह इस तरह से है और उस तरह से है और इत्यादि। पहली बात, आप जानते हैं, ऊंचे तेज दिमाग वाले ये विशाल गाय जिसे शैतान ने अंदर भेजा है, अंदर आकर कहते हैं, तो इसे ऐसे होना चाहिए। मैं तुम्हें यह साबित कर सकता हूँ, कोई बदतन नहीं रखता। आप क्या साबित कर सकते हो? यदि ये वचन के विपरीत है तो इससे दूर रहो। यह सही बात है। हर एक सिद्धांत के हवा के झोंके से उठा लिए जाते हैं। इसे कहीं भी फूंक लो और कभी भी फूंक लो, ये सच है। रूस आज एक अभिषेक मसीहा के लिए देख रहा है। वे किसके लिए देख रहे हैं? क्या होता यदि परमेश्वर उनके लिए अभिषेक मसीहा को भेजता है, एक मेमने को, जैसे उसने 1900 वर्ष पहले भेजा था? वे इससे पीछा छुड़ाते, वैसे ही जैसे हेरोदेस ने किया, इससे छुटकारा पाने की अपनी पूरी कोशिश करते। रूस की एक मसीहा के लिए क्या राय है? वे एक विज्ञान को चाहते हैं, वे एक अभिषेक विज्ञान को चाहते हैं, वैज्ञानिक, एक प्रतिभाशाली जो उनके लिए दुनिया को जीत सकता है, जो उनको हरा सकता है, बाकी की दुनिया चंद्रमा की ओर जाए, जो बाहरी अंतरिक्ष को जीत सकता हो, जो उन्हें सितारों के पार ले जा सकता हो। इसी तरह के एक मसीहा के लिए रूस देख रहा है। हे परमेश्वर, अब सुनना, हम फिर से क्रिसमस के समय पर हैं। क्या हो यदि ये उन्हें मिल जाता है? तब वे उसके विपरीत कुछ तो देखते हैं। बाकी लोगों का क्या जिसे परमेश्वर ने आने के लिए बनाया है? देखा, देखो, परमेश्वर जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है, ना कि हम क्या चाहते हैं। अब उस पर अध्ययन करें। क्या होता यदि रूस को उनका अभिषेकित मिल जाता है? अब वे एक मेमने को ग्रहण नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वे किसी को भी ग्रहण नहीं करेंगे। नहीं श्रीमान, वे इसे नहीं चाहते हैं। इसके लिए ऐसा ही है, वे बस इसे नहीं चाहते हैं। वे उस प्रकार से कुछ भी नहीं चाहते हैं। वे अभिषिक मसीहा को चाहते हैं, तो ठीक है, मसीहा का मतलब होता है एक जो अभिषिक्त है। तो फिर यदि वे उस एक अभिषिक्त को चाहते हैं, लेकिन वे एक अभिषिक्त वैज्ञानिक को चाहते हैं, एक प्रतिभाशाली जो परमाणु को लेकर और उनके टुकड़े कर सकता है, जो अंतरिक्ष को जीत सकता है, जो रूस को चंद्रमा के लिए ले जा सकता है, और पीछे देखकर और खुद की छाती को ठोककर और कहे तुम शेष बचा हुआ संसार असफल हो, हमारी सेवा करो। यही वो है, यही है जो रूस चाहता है। ओ हाँ श्रीमान, आप जानते हैं सारा संसार पुकार रहा है। ज्यादा समय नहीं हुआ जर्मनी ने उनमें से एक के लिए मांग की और उन्हें क्या मिला? देखिए उन्होंने इसके साथ भी क्या किया। देखा आप समझे? क्या आप नहीं समझे? उन्हें एक मिला हिटलर और उन्हें खुद के लिए क्या मिला? गड़बड़ी। ऐसा ही है जो इन अभिषिक मसीहों को स्वीकार करने से होता है। यदि आप परमेश्वर के मसीहा को अस्वीकार करते हैं, उन्हें क्या मिला? जब पेंटिकॉस्टल आशीषें रूस या जर्मनी पर उतरी, उन्होंने संदेश को ठुकरा दिया, वे उन पर हंसे और उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रूस को ठुकरा दिया और उन्हें एक दुगना क्रूस मिला। स्वास्तिक, आप दया को ग्रहण नहीं करते हैं तो न्याय के अलावा और कुछ भी नहीं बचता है। यह सच है दोस्तों। अब देखो कि वे आज कहां पर हैं, समझे? ध्यान दें, उनके पास कहीं भी कोई सदस्यता नहीं है। वे तो केवल एक बिखरे हुए लोग हैं। उन्होंने गलत मसीहा को स्वीकार किया और यदि रूस को ऐसा ही कोई एक मिलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितना भी अपने प्रतिभाशाली को स्वीकार करें, ये उसी बात पर आ जाएंगे। ये सारे राष्ट्रों को नष्ट कर देगा, समझे? भारत आज एक अभिषिक्त व्यक्ति को चाहता है, वे एक मसीहा को चाहते हैं। अब याद रखें, मसीहा का मतलब होता है अभिषिक्त। वे एक अभिषिक्त व्यक्ति को चाहते हैं। वे क्या चाहते हैं? वे एक व्यक्ति को चाहते हैं जो उन्हें खिलाए, उन्हें कुछ तो खाने के लिए दे, उन्हें पहनने के लिए कपड़े दे, बिना कुछ काम किए केवल वह सड़कों पर चलकर जाए और एक ओर से दूसरी ओर पहुंच जाए। आप वहां पर हैं, वे काम करना नहीं चाहते, वे सिर्फ भीख चाहते हैं। सो वे किसी तरह का एक पवित्र व्यक्ति चाहते हैं कि वो उठ खड़ा हो, जो पेड़ के ऊपरी हिस्से पर पहुंचकर और इसे हिला सकता है, रोटी और मांस और इत्यादि वहाँ उनमें से ऊपर से नीचे गिराए और वे चारों ओर बैठकर और खाएं और बाकी दिन भर सोते रहें और उठें और उनके पास सबसे अच्छे कपड़े हों। इसी प्रकार का एक मसीहा भारत चाहता है। रूस क्रिसमस पर अपने अभिषिक्त मसीहा के लिए एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक को चाहता है। यही है वो जिसे वे देना चाहते हैं। भारत एक मसीहा को चाहता है जो उन्हें खिला सकता है और उन्हें पहनने के लिए कपड़े दे, बिना काम किए। अमेरिका, आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या राय है अमेरिका? आप एक मसीहा के लिए पुकार रहे थे, मुझे पता है कि यह टेप किया जा रहा है। आप एक मसीहा के लिए पुकार रहे थे, आप क्या चाहते हैं? आपके पास वो है जो आप चाहते थे। आप एक राजनेता को चाहते थे और आपको ये मिला है। अब आप इसके साथ क्या करने जा रहे हो? वो आपकी खाल को खींच लेगा। यही है वो जो ये करने जा रहा है, ताकि आपको आपकी कब्र पर भेजे। आप इसे चाहते थे, आपके पास अपनी इच्छा है। अब आप इसके साथ क्या करने वाले हैं? अब यह आपके हाथों पर है। आधुनिक अहाब और इजाबेल, वही चीज जिससे आप यहाँ पर स्वतंत्रता पाने के लिए दौड़ रहे थे, आपने अपने आप को फिर से इसके अंदर वापस खींच लिया है। लेकिन यही है वो जिसे आप चाहते थे। आप इस समय के किसी आवारा किस्म के बाल कटे हुए रिकी आधुनिक एल्विस को चाहते थे, जिसे आपने पा लिया है। आप एक चतुर तेज दिमाग के साथ एक शिक्षित राजनेता को चाहते थे, जिसे आपने पा लिया है। आपने इसे कैसे किया? एक राजनीति की धूर्तता की एक मशीन के द्वारा इसे अंदर लेकर आए, इन भले लोगों की आंखों पे धूल झोंक कर। अब मैं न तो लोकतंत्रवादी हूँ और न ही गणतंत्रवादी, मैं एक मसीह हूँ, समझे? समझे, दोनों बाजू सड़े हुए हैं। लेकिन जब एक आदमी जिसने कम से कम मसीह धर्म के विचारों और आशाओं को प्रदर्शित किया दूसरी तरफ से, और फिर आप मुड़कर और मशीनों को बनाते हैं क्या करने के लिए? जिससे प्रतिभाशाली को चुने जिसे आप चाहते थे। आपने इसे कैसे किया? आप उसे टेलीविजन पर डालते हैं, इसे देश भर में फैलाते हुए। ओह प्रभु, चुनाव में दोनों राष्ट्रपतियों के बीच मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण करने की कोशिश करते हैं। आपने उस व्यक्ति को चुना जिसे आपने सोचा। जिसका दिमाग तेज था और यह नहीं देख रहे थे कि इसके पीछे क्या था। आप देखते हैं कि आपको अपने लेन देन में क्या मिला। ओह, ये फिर से क्रिसमस है। हाँ, अमेरिका को उसका मसीहा मिल गया है। आप उसके साथ क्या करने जा रहे हो, उसे देखें, वह आपके लिए क्या करता है। आप केवल याद रखें, जैसे कि हिटलर ने जर्मनी में किया था। आप केवल याद करें, इसे अपने मन में रखें, यह टेप किया गया है। हाँ, फिर भी वहाँ अब भी देश में हो चुकी बेदारियों की पर्याप्त छाप थी, जिसने काफी सभ्य लोगों को छोड़ा था। उनमें परमेश्वर के प्रति डर का मन था, जो उस चीज को बनाते और इसे कुछ समय तक रखे रहते थे। लेकिन आप अपने लिए अपने ही कारीगरों के द्वारा मशीन को तैयार करते हैं, उस एक मशीन को जो वोटों के लिए धोखे का काम कर सकती है, और आपका खुद का समाचार पत्र इसे सारे देश भर में फैला देता है, और आपने इसे सुलझाने के लिए इसके बारे में कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपको ये मिल गया, इसी तरह का एक मसीहा जिसे वे चाहते थे। इसलिए मुझे लगता है कि वे हो सकता है आराम से होंगे। उन्हें एक प्रतिभाशाली, एक दिमाग वाला, निश्चित ही चतुर, बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति मिल गया है। और आप अपने प्रभु की शिक्षा को अच्छी तरह से और ठीक तरह से जानते हैं। उस दिन के दुष्ट लोग और हर समय के हमेशा ही चतुर लोग रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि ये केन के लोग थे जो वैज्ञानिक बन गए और प्रतिभाशाली, जबकि परमेश्वर के लोग चरवाहे और इत्यादि थे। वे सीधे विनाश के नीचे थे, और ये वे विनर्म, गवार, किसान और इत्यादि किस्म के लोग थे, और जो नाव में बच गए थे, और प्रतिभाशाली नष्ट हो गए थे। क्या आप नहीं जानते, यीशु ने कहा, इस दिन के, इस संसार के, वे राज्य के बच्चों की तुलना में बुद्धिमान और चतुर हैं। क्यों? वे मेमने हैं। उन्हें एक नेतृत्व करने वालों की जरूरत है, और वे बुद्धि के द्वारा अपने नेतृत्व करने वाले को चुनने की कोशिश करते हैं, जो चतुराई करता है, लेकिन नम्र अपने नेतृत्व करने वाले को चुनता है, जो पवित्र आत्मा है। बिल्कुल यही है जो कलीसिया ने किया है। संप्रदाय के बड़े लोगों को कलीसिया ने चुना है, जबकि मसीह की वास्तविक देह पवित्र आत्मा और उसके वचन को चुनती है। यह निर्भर करता है आप किसे नेतृत्व करने के लिए दे रहे हैं। एक मेमने को नेतृत्व करना होता है, और यही है वो जहां हमें जाना है। अब उनके पास उनका मसीहा है, उनके अभिषिक्त शिक्षक, चतुर, प्रतिभाशाली। ओह प्रभु, ऐसा एक राष्ट्रपति कभी भी नहीं खड़ा हुआ है जैसा वो चतुर मनुष्य है। क्यों? वह सही खड़ा होगा। और मैं सोचता हूँ, आज या आज रात या किसी और अगले दिन या दो दिन पहले मैंने इसे प्रसारण में सुना, जो एक दिन आ रहा था, कि उससे केवल वो प्रश्न पूछे जो आप चाहते हैं। निश्चय ही बस एक शिक्षित मशीन, यही है जिस पर अमेरिका ने भरोसा किया। अब देखते हैं कि आप इसके साथ कहाँ पहुँचते हैं। आपने ठुकरा दिया अमेरिका, आपने मसीह के संदेश को ठुकरा दिया, आपने पवित्र आत्मा को ठुकरा दिया जो आपके सामने प्रमाणित हुआ था, यहाँ तक ठीक आपकी खुद की सदन की इमारतों में, जहाँ पर मसीह की सामर्थ्य ने खुद को प्रदर्शित किया, जो मनुष्य के विचारों को जानता था। वो बीमारों को ठीक कर सकता था और हृदय के गुप्त स्थानों को जांच कर सकता है, और बिल्कुल वही वो कर सकता है। परमेश्वर ने कहा कि अंतिम दिनों में होगा, और आपने इसे अस्वीकार कर दिया है। वो बिल्कुल साफ सुथरा नहीं था, इसने एक चरनी में जन्म लिया था, यह देश के लिए दुर्गंध युक्त था। और याद रखें, आपकी राजनीतियाँ और कलीसियाएं भी परमेश्वर के सामने दुर्गंध युक्त हैं। परमेश्वर नम्रता की मीठी सुगंधित खुशबू से प्रेम करता है, कलीसिया इसे नहीं चाहता है, एक झूठी नम्रता। परमेश्वर असली नम्रता को चाहता है, यही है जिसे वो प्रेम करता है। अब उनके पास उनके बड़े बड़े शिक्षित थे। कलीसिया एक मसीहा को चाहती है। अच्छा, तो यह क्या चाहती है? यह एक प्रतिभाशाली संप्रदाय के सिद्धांतों को चाहते हैं। वो एक अभिषिक्त को चाहते हैं, ताकि उन्हें एक स्थान पर लेकर आए। मैं यहाँ अपने समय को लूंगा, ताकि आपको पक्का हो जाए ये यहाँ पर और परदेश में भी ऐसा ही है। आज कलीसिया प्रतिभाशाली अभिषिक्त को चाहती है, जो सब कुछ इतना सही तरीके से कर चुके हैं कि वे संसार में जी सकते हैं। महिलाएं अपने बाल को काट सकती है, अपने चेहरे को रंग सकती है, पुरुष 4-5 बार विवाह कर सकता है और फिर भी डीकन बना रहे। ओह, वे कुछ भी कर सकते हैं जो वे करना चाहते हैं, और फिर भी मसीह होने के उनके अंगीकार को बनाए रखें। आप इसे पाने जा रहे हैं। आप परमेश्वर के मसीह को नहीं चाहते हैं। वो अभिषिक्त वचन, वो वचन प्रकट बना, वचन खुद को आगे ला रहा है। आप उसे नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ने इसे आपके लिए भेजा, लेकिन कलीसिया इसे नहीं चाहती है। वे अपने संस्था को चाहते हैं और वे एक प्रतिभाशाली को चाहते हैं जो सिद्धांतों को तैयार कर सकता है, जहाँ हर चीज इसके लिए झुकती हो। आपको ये मिल जाएगा। यह उसके राह पर है। आपके पास इसके लिए बहुत सारी संतानें हैं, लेकिन इन दिनों में से एक दिन दादा खड़े होने जा रहे हैं, एक फिरौन जो यूसुफ को नहीं जानता, और यह वही है जो आप चाहते थे। यही है जो कलीसिया आप देख सकते हैं, वे उसी तरह से कर रहे हैं। हाँ महोदय, उसी तरह से। प्रकाशित वाक्य 17 स्पष्ट रूप से बताता है पुरानी वेश्या और उसके पुत्रियों के बारे में, बिल्कुल ठीक ठीक। और ये सब माँ के घर वापस जाएंगे। ये ठीक अभी उसकी राह पर है, ताकि एक विश्वव्यापी कलीसिया को बनाए। आप बिल्कुल ठीक वैसे ही संप्रदाय को पाने जा रहे हैं जो आप चाहते हैं। मुझे सुनना, ये सब पूरा हो जाएगा, और हो सकता है मैं उस समय तक चला जाऊँ, लेकिन जो स्वीकार नहीं करेंगे कि जब संध्या का उजाला गिरने लगता है और बाहर जाता है, तो वे यहाँ वहाँ देखते हैं कि उन्हें किसी चीज के लिए उनके संप्रदायों के द्वारा उन पर दबाव डाला जाता है, और उनके संप्रदायों ने अपने चेहरों को बचाने के लिए इसे किया है, जो वे सब कुछ करेंगे। लेकिन वे लोग जो उस व्यवस्था को नहीं चाहते हैं, यही परमेश्वर की व्यवस्था को स्वीकार करते हैं जो पवित्र आत्मा और वचन है, वे कहते हैं वो मनुष्य निश्चय ही सही रहा होगा। हो सकता है बहुत देर हो जाए। हम देखते हैं एपिस्कोपलियन, प्रेस्बिटेरियन, बैप्टिस्ट, सब कुछ फुल गॉस्पल बिजनेसमैन के अंदर आ रहे हैं। हर एक पवित्र आत्मा को पाने की कोशिश कर रहा है। क्या लोगों को ये एहसास नहीं होता है कि यही वो घड़ी है कि दूल्हा आता है, जब सोई हुई कुंवारी ने आकर और तेल खरीदने की कोशिश की। यही है जब यीशु ने कहा कि दूल्हा आकर और अंदर चला गया, और वे अंदर नहीं गए। इन पुरुषों के साथ क्या मामला है, उस पर चिल्लाते हैं, जबकि बाइबल साबित करता है कि वे अंदर नहीं गए। और जिस समय वे इसे करने की कोशिश कर रहे थे, दूल्हा आ गया और उन्हें बाहरी अंधकार में डाल दिया गया। ये क्या था? हो सकता है कि उनके पास सभी प्रकार की गतिविधियां थी, सभी प्रकार की बनावट, सब प्रकार की ऐसी उत्तेजना जो शायद इसके प्रमाण की तरह दिखाई देती हो, लेकिन कलीसिया अंदर मोहर बंद हो चुकी है और वो जा चुकी थी। यह भविष्यवाणी हो सकती है। वे कुछ तो चाहते हैं, वे ऐसा कुछ चाहते हैं कि वे कैसे भी जी सकते हैं, जैसे भी वे चाहते हैं। यही है वो जिसके लिए कलीसिया की दुनिया देख रही है। कोई तो जिसमें कि वे शहर की सबसे बड़ी कलीसिया में जा सकते हैं, जहां शहर की सारी हस्तियां संबंध रखती है। उनके पास इमारत पर सबसे ऊंची चोटी हो सकती है, उनके पास सबसे अच्छा बजाने का वाद्य उपकरण हो सकता है, उनके पास बैठने का स्थान हो सकता है, उनके पास एक सेवक हो सकता है जो उन्हें एक शब्द भी नहीं कहेगा। वे जिस तरह से जीते हैं, यदि वे नाचना चाहते हैं, वे किसी प्रकार का तमाशा करवाना चाहते हैं, वे छोटे कपड़े पहनना चाहते हैं, वे अपने बालों को छोटा करवाना चाहते हैं, या वे इन चीजों को करना चाहते हैं, वे सिगरेट पी सकते हैं या बस सामाजिक चलन के लिए पी सकते हैं। कलीसियाओं में ऐसा ही चलन है, बस एक चलन के लिए पीना, बस अपने बच्चों को पीना सिखाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पीना है। ये हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिगरेट पियो, पर हद से ज्यादा नहीं। जो कुछ भी आप पहनना चाहते हैं पहने, लेकिन केवल खुद को सभ्य के जैसे बनाए रखने की कोशिश करें, जैसे आप चाहते हैं, कैसे करना है या जैसे आप कर सकते हैं। देखा, यह ढोंगीपन है, वह अभिषिक शैतान। उस चीज को संप्रदाय कहा जाता है, उस चीज को धर्म कहा जाता है, यह शैतान का है। मसीह और उसके वचन की ओर वापस आओ, इस अभागी पीढ़ी से खुद को बचाओ। आप में से हर एक जन पश्चाताप करो, इससे पहले पश्चाताप में बहुत देर हो जाए, और यह ऐसा किसी भी समय हो सकता है। जब हम सोई हुई कुंवारी को इस तरह से अभिनय करते हुए देखते हैं, इससे ऐसा दिखाई देता है यह लोगों को उनके ज्ञान से डरा देते हैं, लेकिन बजाय इसके वे ओह महिमा, क्या यह अद्भुत नहीं है, हालेलुया, ओह प्रभु, लोग कितनी दूर तक जा सकते हैं। वे किस तरह की अवस्था के अंदर जा सकते हैं उनके राजनीतिक दिमाग से, उनकी आधुनिक धारणा के साथ और परमेश्वर के वचन के बारे में उतना नहीं जानते हैं जितना एक पोटेटोन जाति जो एक मिस्त्रियों की रात में करती है उसके बारे में जानते हैं। सही है, केवल इसकी एक धर्म ज्ञान की धारणा या कुछ मनोवैज्ञानिक चीज है जो उनके लिए एक रीति रिवाज या किसी तरह की एक चीज के तरीके से प्रस्तुत की गई है, और इसके साथ पेंटिकॉस्टल बहुत ही घटिया हो गए हैं। इस उच्चारण के लिए क्षमा करें। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, महिला प्रचारक और इत्यादि की ये घास की जड़ें हैं। सही है, और वहाँ आप हो, नाचना, रॉक एंड रोल, शिक्षा, इस प्रकार की एक कलीसिया जिसे संसार चाहता है, इसी प्रकार के मसीहा को वे चाहते हैं, वही एक जो उन्हें एक साथ जोड़ सकता है। आप उस एक को पाने जा रहे हैं। इसका आत्मा ये पहले से ही मनुष्यों के बच्चों के बीच काम कर रहा है। यह सही है, फिर भी वे मसीहत का दावा करते हैं, उन्हें यह मिलने जा रहा है। परमेश्वर ने उनके लिए भेजता है 1963 में। यदि परमेश्वर 1963 में हम पर भेजता है वही अभिषेक जिसे उसने वहाँ पर पहले आरंभ में किया था, हम इसे ठुकरा देंगे जैसा उन्होंने तब किया था, क्योंकि यदि वो एक अभिषेक मसीहा कलीसिय में आया वो वैसा ही होगा जैसे बाइबल ने कहा कि वो था। इब्रानियों 13:8 ये कहता है यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। तो यदि हम एक मसीहा के लिए प्रार्थना करते हैं, एक जो अभिषिक्त है, अभिषिक्त, क्या हम एक धार्मिक राजनेता को चाहते हैं? क्या हम एक प्रतिभाशाली सैन्य को चाहते हैं? क्या हम एक शिक्षित वैज्ञानिक चाहते हैं? और आप एक मेमने को चाहते हैं, एक मेमने को चाहते हैं जो आपको वापस लाएगा, आपकी खुद की महिमा के लिए नहीं लेकिन वापस वचन के लिए, वापस एक जो आपको सत्य बताएगा चाहे वो जो भी हो। देखो, इसके साथ बने रहें, इसके क्रम में आ जाएं, वे इसे नहीं चाहते हैं। यदि वो आज आता है तो वो वैसा ही होगा जैसे वो तब था। वो पूरी तरह से पिता के वचन के साथ बना रहेगा। उसे पक्का होगा कि हर एक वचन जिसकी बाइबल में प्रतिज्ञा की गई थी वो मनुष्य के पुत्रों के लिए प्रकट की गई थी, बिल्कुल ऐसा ही है। यीशु ने कहा, कौन मुझे पापी साबित कर सकता है? कौन मुझ पर पाप का दोष लगा सकता है, अविश्वास का? यदि ऐसा कुछ है जो पिता ने इसे नहीं कहा कि मैं ऐसा करूंगा, तो यदि मैं इसे नहीं करता हूं, तो मुझे बताओ कि मैं कहां चूक गया हूं। आमीन, मुझे बताओ मैं कहां पर गलत हूं। आमीन, आप जानते हैं अविश्वास पाप है। यह सही है, हम ये जानते हैं। कौन मुझे दिखा सकता है जहां मैंने पूरा नहीं किया है? उसने कहा, हर एक वचन जो पिता ने कहा कि मैं करूंगा, कौन मुझ पर अपनी उंगली उठा सकता है और कह सकता है कि मैंने इसे नहीं किया? तुम में से कौन है? तब उन्होंने वापस क्यों उत्तर नहीं दिया? क्योंकि इसकी भविष्यवाणी की गई थी कि वे ऐसा करेंगे। लेकिन वो पिता के शब्द को रखता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले स्थान पर किया था। उसने बिल्कुल ठीक वैसे ही रखा, क्योंकि वो नहीं बदल सकता, क्योंकि परमेश्वर वचन है। इसके लिए वो बिल्कुल वही है जो वो है, वह वचन है। और वो वचन क्या है? वो पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर का वचन लेकर और इसे प्रकट करता है। बिल्कुल यही है जो यीशु मसीह, जब परमेश्वर वो आत्मा, वो पिता उसके पुत्र के रूप में हमारे बीच में देहधारी हुआ, उसने परमेश्वर के वचन को लेकर और इसे प्रकट किया, इसे लोगों को दिखाया, और वे इसे उस तरह से नहीं चाहते थे। उनके पास उनके खुद के धर्म मत थे, उनके पास उनके खुद के संप्रदाय थे, और यह उनके सभी संप्रदायों के विपरीत था, इसलिए उन्होंने इसे ग्रहण नहीं किया। और आज भी ये ऐसी ही बात होगी। यदि मसीहा आता है वह उन बातों को लेगा जिसकी परमेश्वर ने यहाँ प्रतिज्ञा की थी और इस बाइबल में, और उन्हें प्रकट करेगा मनुष्य के पुत्रों के सामने, और हर संप्रदाय उससे मुड़ जाएंगे। वे इसे नहीं चाहते हैं, उनका इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यही है वो जो परमेश्वर उनके लिए भेजेगा। यदि वो उनके लिए कुछ भी भेजता है तो वो यही होना है। और फिर वे इसे दोषी ठहराते हैं और वे इसे खुद पर दोष लाएंगे इस पीढ़ी के लोगों के लिए, वैसे ही जैसे यहूदियों ने उस दिन में किया था और बाकी के लोगों ने। जी हाँ श्रीमान, आप जानते हैं वह क्या करेगा यदि वो मसीहा 1963 में आता है? तो वह क्या करेगा? आप जानते हैं कि वह क्या करेगा? वह हर एक संप्रदाय को फाड़ डालता जो हमारे पास है, वो उस चीज को जमीन से उखाड़ देता। ठीक है, वे कहते हैं वो कहाँ पर जाता? डॉक्टर फलाना फलाना के पास या किसी न किसी डॉक्टर के पास, वो कहता तुम अपने पिता शैतान से हो और उनके कामों को तुम करते हो। बिल्कुल यही है जो वो कहेगा। वह किसी भी तरह से उन्हें एक घूसा नहीं मारेगा। उसने आरंभ में भी ऐसा नहीं किया और वो आज भी वैसा ही है जैसा वो तब था। कुछ भी जो वचन के विपरीत था वो इसे बताएगा। वो कहेगा तुम अपने पिता शैतान से हो और उसके कामों को तुम करते हो, उसके वचन के विपरीत बातों को करते हो। यह सही है और मसीह का चिन्ह उसके पीछे जाता है। ये सही है, उसे उनके लिए खड़े होकर और कहने दो, क्या मैंने इसे नहीं किया? जिस बात ने जगह ली है, तुम में से कौन मुझ पर अविश्वास का दोष लगा सकता है? देखा, लेकिन वे उसे एक कठपुतली बनाने की कोशिश करते, उसे यहाँ से वहाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिए फिरते, जैसे फरीसी ने किया, उसे वहाँ पर लेकर आए ताकि उसका मनोरंजन करें, उसके आसपास के मेहमानों के एक बड़े झुंड को लेकर आए, यह साबित करने के लिए कि वो एक भविष्यवक्ता नहीं था। आप उस कहानी को जानते हैं जिस पर मैंने प्रचार किया है। देखो, वे आज भी उसी काम को करते हैं, क्योंकि वो एक साथ लाने के लिए कर सकता है जिससे कि उनके लिए मनोरंजन को लेकर आए, वे उसी काम को करेंगे। और वो जाता है, हालेलुया, वह जाना चाहता है, क्योंकि वो हमेशा ही जाता है जहां उसे आमंत्रित किया जाता है। जबकि वह जानता था कि वो फरीसी क्या करेगा, वह जानता था कि फरीसी का उसके लिए कोई उपयोग नहीं था, वह जानता था कहीं तो कोई एक आस्तीन को चढ़ाए हुए है। उन फरीसियों का उसके साथ कुछ लेना देना नहीं था, वे उससे नफरत करते थे। और यह बूढ़ा शमौन चाहता था कि वो वहाँ पर आए ताकि वह अपने स्थान के आसपास भीड़ को ला सके, लेकिन वो इसे जान गया, वो अंदर चला गया। क्या उसने उस पर ज्यादा ध्यान दिया? वे तो बड़े पदाधिकारी थे जिन पर वो ध्यान दे रहा था। वह बिना धुले पैरों के साथ पीछे बैठ गया। आज भी वही बात होगी, वे मसीह को नहीं चाहते हैं, वे परमेश्वर के तरीके को नहीं चाहते हैं। आप देखते हैं, जी हाँ, यीशु कहेगा तुम अपने पिता शैतान से हो, और वे पुरुष जिन्होंने उन नियमों और आदि और हर एक चीज को उनके संप्रदाय और संस्थाओं में बनाए रखा है केवल शब्द के लिए, वे हल्के से लेंगे। और यीशु ने कहा, तुमने अपनी संस्थाओं को लेकर और अपनी रीति रिवाजों से परमेश्वर के वचन को बेअसर बना दिया है। और इब्रानियों 9:12 वहाँ पर कहता है, मैं सोचता हूँ नहीं, यह इब्रानियों 12 नहीं 9:12, मैं सोचता हूँ कि यह ठीक वहीं कहीं आसपास है। उसने कहा कि जब हम साफ और क्षमा किए जाते हैं तो हमारे मरे हुए शारीरिक काम शुद्ध हो जाते हैं, और जब हम वास्तव में यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों के लिए क्षमा किए जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हम शारीरिक कार्यों के साथ मर जाते हैं। ओह, आप जो पेंटिकॉस्टल कलीसिया हो, आपने इस तरह की गलती को क्यों किया? आप अंधे की अगुवाई करते हैं। क्या आप नहीं जानते कि आप उससे 50 वर्ष पहले बाहर आए हैं और इन लोगों के इस समूह को वापस इसके अंदर खींच लिया है? क्या आप प्रभु के वचन को नहीं सुन सकते? सूखी हड्डियों, तुम्हारे साथ क्या मामला है? आप उसे क्यों ग्रहण नहीं करना चाहते हो जो आपके लिए भेजा गया है? वो आपको प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने तब नहीं करना चाहा, वे अब भी नहीं करेंगे। अब आप क्या जानते हैं? फिर से उसकी योजनाएं और संप्रदाय और संस्थाओं के संसार की योजनाएं टूटकर बिखर रही हैं, मनुष्य की योजनाएं टूटकर बिखर रही हैं। परमेश्वर ने हमें कभी एक संस्था का प्रस्ताव नहीं दिया था, उसने हमें कभी एक संप्रदाय का प्रस्ताव नहीं दिया था। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे बाइबल में से दिखाए जहां उसने ऐसा कभी किया हो। मैं आपको दिखा सकता हूं कि उसने आपको कहां इसे करने के लिए कहा था। तुम मुझे दिखाओ जहां उसने कहा हो ऐसा करो। आप कहते हैं, तब भाई ब्रैनम, यीशु ने मनुष्य के लिए क्या प्रस्ताव किया? एक राज्य, हालेलुया, और वो राजा है, संतों का राजा, प्रभुओं का प्रभु। उसने हमारे लिए एक राज्य का प्रस्ताव किया, ना ही एक राजनेता, ना संप्रदाय के नियम, लेकिन एक राज्य। उसने कहा, पिलातुस ने कहा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने कहा, तुमने ये कहा है। उसने कहा, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता था, मेरे लोग मेरे लिए लड़ते, लेकिन मेरा राज्य ऊपर से है, और हम इन संसार की चीजों को क्यों पकड़े रहें, जबकि हम उस राज्य के बच्चे हैं जो ऊपर से है। समझे, वहाँ पर कुछ तो कहीं गलत है। लेकिन हमें एक सिद्धांत का प्रस्ताव नहीं किया गया था, हमें एक संगठन का प्रस्ताव नहीं किया गया था, हमें दुनिया के एक राजनीतिक शासन का प्रस्ताव नहीं किया गया था, लेकिन हमें नम्रता का साम्राज्य दिया गया था। मेमने के जीवन की नाई जो हम में है, न ही संसार का। आप अब संसार के नहीं हैं, छोटे बच्चों आप संसार के नहीं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जैसे कि मैं संसार का नहीं हूं, कि वे संसार के ना हो। समझे, यीशु ने हमारे लिए यही प्रार्थना की, और फिर भी हम वापस घूम जाते हैं और खुद को सांसारिक बातों में डालकर इससे जोड़ देते हैं, जहां सभी प्रकार के लोग होते हैं। अब आप जानते हैं संसार में एक भी कलीसिया नहीं है, लेकिन ढोंगियों से भरा हुआ है। और यीशु ने कहा, विश्वासियों के बीच खुद को जुए में मत जूतो। सो एक संगठन के लिए क्यों जुए में जूते, जब परमेश्वर के राज्य ने आपको ये प्रस्ताव दिया है कि आपने इसमें जन्म लिया है, और इसमें एक भी ढोंगी नहीं है। सभी शुद्ध बिना मिलावट परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, और उसके साथ बने रहते हैं। और आपका जीवन ये साबित करता है, और परमेश्वर अपने वचन को प्रमाणित करता है, वही मसीह है, यही मसीहा की पत्नी है। और परमेश्वर उस प्रणाली में शिक्षकों, पास्टरों को, भविष्यवक्ताओं और इत्यादि को निर्धारित करता है, जिससे कि वहाँ उसमें उसकी साफ सुथरी मसीहत को बनाए रखे, न कि संप्रदाय रीति रिवाजों के साथ मिश्रित हो, लेकिन उस चीज को भी निकालकर साफ करता है और कलीसिया को शुद्ध रखता है, मसीह और उसके वचन के लिए बिना मिलावट का बनाए रखता है। आपको लगता है कि कलीसिया उसे ग्रहण करेगी? वे इसे बाहर कर देंगे, इसके साथ कुछ लेना देना नहीं रखना चाहते हैं। उनके पास अपनी खुद की राजनीतिक व्यवस्था है, और जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के पास उसके प्रभावशाली हैं, जो कलीसिया उसके प्रतिभाशाली व्यक्ति को लेने जा रही है, उन्हें ये मिल जाएगा। आप केवल देखते रहें, ये ठीक अभी उसके राह पर है, उन्होंने अपने आप को इसके अंदर उलझा दिया है। लेकिन हमारे पास एक राज्य है, और इस राज्य में वो अनंत जीवन है, सदस्यता नहीं लेकिन अनंत जीवन है, और इसे एक अनंत राजा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अनंत जीवन से भरा एक अनंत राज्य, जिसे अनंत राजा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एक अनंत लोगों के लिए जो दुनिया की नींव डालने से पहले ठहराए गए थे, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी किया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। इब्रानियों 11, यह सही है। अब यह उस बात पर निर्भर करता है आप किसके लिए देख रहे हैं। यदि आप अब्राहम हैं, आप उस राज्य के लिए देख रहे हैं। मैं आज सुबह आपको ये दिखा सकता हूँ। जी हाँ श्रीमान, अब अनंत काल से भरा एक शाश्वत राज्य, जिसे नियंत्रित किया जाता है उसके अनंत वचन के द्वारा, कुछ पहले से ठहराए गए अनंत लोगों के लिए, वो रहा। क्यों? यह हमेशा से था, हमेशा होगा, ना कभी आरंभ हुआ था या ना कभी अंत हुआ था। परमेश्वर के मन में यह वही, जब यह परमेश्वर की अनंतता के साथ था और परमेश्वर का उद्देश्य पूरा किया जाएगा। तो यह संसार बिखर रहा है, उसे बिखरने दो, यह ठीक है, यह है, यह किसी भी तरह से करने जा रहा है। मीका ने यहाँ क्या कहा, मीका यहाँ पर क्या बोलता है, पहाड़ गिरने लगेंगे, यह मोम की तरह पिघल जाएंगे, और जैसे कि ऊपर से एक हिम पिघल कर गिरती है, या बल्कि किसी प्रकार का एक गर्म झरना, यह पिघल कर और बिखर जाएगी, लेकिन यहोवा हमेशा के लिए बना रहेगा। सभी देह घास के नाई है, परमेश्वर की सांस इसे उड़ा देती है, कि चाहे यह फूल हो, घास हो, कितना भी सुंदर हो, यह सूख जाएगा, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए बना रहता है। यशाया 40 मसीहा के आने की भविष्यवाणी कर रहा था, जो ऐसा कहता है, हमारी सारी संस्थाएं, सांप्रदायिक प्रणाली, पढ़े लिखे, प्रतिभाशाली और बाकी के इत्यादि नाश हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए रहेगा। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा, अधोलोक के फाटक इसके खिलाफ प्रबल नहीं हो सकते हैं। हम क्रिसमस के समय पर हैं। मैं नहीं जानता था कि हमें ये दिन का समय मिलने वाला था। जब मैं इस समय की आवश्यकता को सोचता हूँ तो मैं बस खो जाता हूँ। मैं जल्दी करूँगा। हाँ, हमने इस राज्य में जन्म लिया है, और कह सकते हैं हम मसीह के हैं जो विश्वास करते हैं और इस राज्य में हैं। अब इब्रानियों की पुस्तक के अंदर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्योंकि हमने एक राज्य को पाया है, ना ही एक संस्था को, ना ही एक प्रणाली को पाया है, एक ऐसा राज्य जो कभी हिलाया नहीं जा सकता है। संसार बिखर रहा है, यह सत्य है, और हर राजनेता, हर संप्रदाय और हर कलीसिया टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई है, लेकिन हमें एक ऐसा राज्य मिलता है जो कभी भी हिलाया नहीं जा सकता है। क्योंकि यदि वे जिन्होंने उसे ठुकरा दिया, जिसने सिनाई पर्वत पर से बात की थी और उसकी आवाज ने पृथ्वी को नीचे तक हिलाकर रख दिया, तो आप कितना अधिक देखते हैं कि आप इसे ना ठुकराएं। किसे? उसे, उसका वचन जो स्वर्ग से बोलता है, उसके राज्य से, क्योंकि हम ऐसे राज्य में हैं जो कभी हिलाया नहीं जा सकता है। आमीन। हर एक चीज जो उसके बाहर है, परमेश्वर ने जो सब कुछ भेजा है, उसने इसे नाजुक बनाया है, इसलिए ये टूट जाता है। इस तरह की नाजुक स्थिति में इसे टूटना है, ये नाजुक है। लेकिन याद रखें कि हमें एक ऐसा राज्य मिला है जो अब मजबूत है। जब बाकी की सारी चीजें गिरती जाती हैं और वापस चली जाती हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि एडी पेरोनेट ने कहा, मसीह जो मजबूत चट्टान है, मैं उस पर खड़ा हूँ, बाकी की सारी जमीनें धसती हुई रेत हैं। एक राज्य, ना ही एक राजनीतिक व्यवस्था, ना ही एक कलीसिया के नियम, ना ही एक संप्रदाय की प्रणाली, ये सब फरीसी और शैतान के ओझा बन जाते हैं। लेकिन हमें एक राज्य मिला है, एक अनंत राजा जो अनंत वचन है, जिसके पास अनंत जीवन है, अपने अनंत वचन के द्वारा अपने अनंत लोगों के लिए, जिसके पास अनंत जीवन है, और हम इसके भागीदार हैं। ओ प्रभु, यही वो बात है। अब ऐसा कुछ जो आपको उससे दूर खींचता है, वह गलत है, यह एक झूठा मसीहा है, एक झूठा अभिषेक। ओह, उसने कहा भाई के पास ऐसा अभिषेक था, किस तरह का अभिषेक? ऐसा ही है। हिटलर के पास भी अभिषेक था, क्रुश्चेव के पास भी एक अभिषेक था, पोप पियस के पास भी एक अभिषेक था। आपके पास किस प्रकार का अभिषेक है? यदि यह इस वचन के साथ अभिषेक नहीं किया गया है और हर एक वचन सत्य होने के लिए प्रमाणित नहीं हुआ है, इसे ऐसा ही छोड़ दे, गलत है, या ये अपने आप में उत्पन्न नहीं होता है, तो यह अंकुरित नहीं है, यह उसके रंग को दिखाएगा। ओह, कहते हैं लेकिन वो किसी और युग के लिए था, उस चीज को अपने हाल में छोड़ दो, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जी हाँ श्रीमान। इसलिए जब ये संसार टूट कर बिखरता है, तो हम एक राज्य में जन्म लेते हैं जो टूट कर बिखर नहीं सकता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि संसार टूट कर बिखर रहा है, इसके नियम टूट कर बिखर रहे हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं आर्थिक प्रणाली टूट कर बिखर रही है, राजनीतिक व्यवस्था बिखर रही है, राष्ट्रीय यूएन की व्यवस्था टूट कर बिखर रहा है, कलीसिया टूट कर बिखर रही है, संप्रदाय टूट कर बिखर रही है, हर एक चीज बिखर रही है, लेकिन हमें एक ऐसा राज्य मिला है जो कभी हिलाया नहीं जा सकता है। यह परमेश्वर का अनंत राज्य है, इसे हिलाया नहीं जा सकता है। हमें बताया गया है कि संप्रदाय की नई प्रणाली ये यहाँ पर विश्व परिषद कलीसिया को ला रही है, जो पृथ्वी पर शांति लाएगी। क्या ही एक निरादर की बात है, मसीह के मुंह पर क्या ही एक बुरी आलोचना है, क्या ही अनादर की बात है, निरादर की बात है, यह शैतान की ओर से है। एक मनुष्य कुछ तो बेहतर संगठित कर सकता है उसके मुकाबले जो परमेश्वर उनके लिए भेज सकता है। बाबुल की मीनार, यह एक दूसरा बाबुल है जिसे अवश्य ही गिरना है। धरती पर शांति, एक झूठा मसीहा, अपने ही शिक्षण में एक मसीह विरोधी। आप कैसे इन संप्रदायों को एक साथ हराएंगे, जबकि वे यहाँ तक एक दूसरे के साथ सहमत भी नहीं होते हैं, जबकि वे अब इस तरह के छोटे छोटे सिद्धांतों में अलग हो गए हैं, कि भला वे कैसे सभी एक साथ जुड़कर और वहाँ पर पहुँचेंगे? जी हाँ, देखो यह एक झूठी तैयारी है। इस सब को किया गया है ताकि प्रोटेस्टेंटिज्म को रोमन वाद में डाला जाए, एक झूठी मसीह विरोधी की शिक्षा। परमेश्वर का राज्य इस संसार का नहीं है, यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। इसलिए यदि वो राज्य इस संसार में संगठित किया गया है, तो यह एक झूठा मसीहा है। यह मसीहा जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया को बहुत ही जल्द प्रस्ताव करने जा रहा है, जिसे वे ले लेंगे, क्योंकि वे इसके लिए रुके हुए हैं। वे इस प्रणाली के लिए देख रहे हैं जो बना सकता है। तो ठीक है, अब हम मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट, निश्चय ही हम एक प्रकार से एक साथ सहमत हैं। आप जानते हैं, हम प्रेस्बिटेरियन, हम पेंटिकॉस्टल, ओह इसमें क्या भिन्नता है भाई, एक भिन्नता है, परमेश्वर आपको भिन्न बनाता है। लेकिन तो ठीक है, हम बस इसे बलिदान करते हैं और आपका महान सुसमाचार का शिक्षण आप इसे छोड़ देते हैं। भला आप कैसे वहाँ उन लोगों के झुंड के साथ जा रहे हैं जो कुछ भी विश्वास नहीं करते हैं, उनमें से कुछ तो लोग नास्तिक हैं और जो झूठा मसीहा है, यही है, यह सही है। जी हाँ श्रीमान, अब परमेश्वर का राज्य इस संसार का नहीं है, और जब मसीह यहाँ पर था वह हमें इस राज्य की योजना को देता है, उसने हमें परमेश्वर के राज्य की योजना को दिया, पिता का राज्य जो उसका वचन है। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि आप उस राज्य में कैसे पहुँचते हैं, यह इन शब्दों में है, यदि आप किसी अन्य दरवाजे पर से अंदर आते हैं आपको उसी दरवाजे में से आना होगा उससे जो बाकी के अंदर आते हैं। यदि आप कहीं और से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, क्यों, आप एक चोर और एक डाकू के समान है। और उसने कहा, जो भी इसमें एक शब्द जोड़ेगा या इससे एक शब्द निकालेगा उसका भाग जीवन की किताब से निकाल दिया जाएगा। तो यदि आप दावा करते हैं कि आपका नाम जीवन की किताब में था, यदि आपने किया है तो इसे निकलने न दें। जब पेंटिकॉस्ट के दिन पर पत्रस ने राज्य के लिए दरवाजा खोला, उसने खोला, तब वो राज्य यरूशलम में स्थापित किया गया था। मैं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति मुझे दिखाए कि कलीसिया का आरंभ रोम से हुआ था। मैं चाहता हूँ कोई तो मुझे ये साबित करे, कलीसिया का आरंभ रोम में कभी भी नहीं हुआ है, कलीसिया का आरंभ यरूशलम में हुआ है। पेंटिकॉस्ट के दिन पर राज्य को स्थापित किया गया था, और जब मनुष्य ने जानना चाहा कि इस राज्य में कैसे पहुँचे, पत्रस ने कहा, आप में से हर एक जन पश्चाताप करे और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यही कारण है जो उन्हें राज्य में डाला जाता है। कोई भी अन्य नीति, संप्रदाय के जरिए या हाथ मिलाने या कुछ भी और, वो झूठा मसीह है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोकप्रिय हैं और आप कितने प्रसिद्ध होंगे, और आप हो सकता है एक डीकन हो, एक पास्टर भी हो, या बिशप, या प्राचीन, या राज्य के अध्यक्ष, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, यह तब तक झूठा है जब तक आप परमेश्वर के नम्र मेमने और उसके राज्य में वापस नहीं आते हैं। अब देखो, और उसने हमें एक योजना को दिया जो पिता का वचन है, और सच्चा विश्वासी इसे पकड़े रखता है, क्योंकि वो इसकी सहायता नहीं कर सकता। यह परमेश्वर का राज्य उसमें है, और जैसे कि अब्राहम, उसने परमेश्वर के वचन के विपरीत कुछ भी चीज को ऐसे बताया जैसे हालांकि यह नहीं थी। और यदि कोई आपको बताता है कि संप्रदाय परमेश्वर की है, आप अब्राहम की तरह बने रहें। यदि कोई आपको बताता है कि आपको छिड़काव करना चाहिए या किसी तरह का ऐसे ही कुछ सिद्धांत या कुछ और जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है, आप इसे विश्वास नहीं करना, आप इसे ऐसे मानना जैसे कि यह था ही नहीं। यदि वे कहते हैं तो ठीक है, अब प्रिय, ऐसा करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप इस पर विश्वास नहीं करना। जब परमेश्वर ने कहा इससे महिलाओं का कोई नुकसान नहीं है कि वो अपने बाल को कटवाए, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा करने से यह उसके लिए घृणित है। जब आप कहते हैं क्यों मैं पतलून पहनती हूँ, मैं छोटे कपड़े नहीं पहनती, परमेश्वर ने कहा एक स्त्री एक पुरुष के जैसे कपड़े को डालेगी, यह उसके लिए एक घृणित है। बाइबल ने कहा एक महिला के लिए बालों को कटवाना गलत है, यह उसके लिए प्रार्थना करना भी असामान्य बात है, और इसी प्रकार की इत्यादि बातें, यहाँ तक कि उसके सिर को खुला रखना, वह अपने सिर का अपमान करती है, परमेश्वर इसे मना करता है। और वो सिद्धांत जो आपको बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं, आप इसे कर सकते हैं, आप इसका विश्वास मत करना, यह एक झूठा अभिषिक्त है, यह एक झूठा मसीह है, यह परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। धर्मी जन परमेश्वर के वचन को पकड़े रहता है, क्योंकि यह परमेश्वर के अनंत व्यवस्था की योजना है। जब परमेश्वर ने एक पुरुष को बनाया तो उसने अलग तरह से बनाया, एक स्त्री बनाई उसने उसे दूसरी तरह से बनाया, उसे एक और तरह से बनाया। वहाँ दो भिन्न वाचाएं हैं, दो अलग अलग योजनाएं हैं, दो अलग अलग जो कुल मिलाकर उनके बीच में थी, और वे एक जैसे नहीं दिखते हैं, वे एक जैसे नहीं दिखते हैं, वे एक जैसे व्यवहार नहीं करते हैं, वे पूरी तरह से अलग हैं। और महिलाएं पुरुष की तरह बनने की कोशिश करती हैं, और पुरुष इतना कायर हो गया है कि वो एक औरत की तरह हो गया है। मैंने कल सिनसिनाटी में एक लड़का देखा जो श्रीमती कैनेडी की तरह लग रहा था, जिस तरह से उसके बाल थे वो वैसे कटे हुए थे। परमेश्वर चाहता है कि एक पुरुष की तरह दिखे, वो चाहता है कि एक स्त्री की तरह दिखे। मैं आपको बताता हूँ, शैतान के इस इजाबेल की प्रणाली ने सारे संसार को भ्रष्टता में डाल दिया है। इसमें एक भी अच्छा स्थान नहीं है, यह सभी सड़े हुए घाव हैं, कैंसर के घाव। ये शैतान की दुष्टता है जो उस व्यवस्था में से बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को खा रही है, जिन्हें वे यहाँ स्थापित कर चुके हैं।
Satan is a vulture feeding upon his own kingdom.
शैतान एक गिद्ध की तरह खाने वाला है। अपने खुद के राज्य में वह एक शैतान है, वह एक अशुद्ध है, वह एक झूठ का पिता है, वह अपने लोगों के मांस को खाता है, वो शैतान। मसीह राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु है, अभिषिक्त मसीहा है। विश्वासी उस वचन को पकड़ता है, परमेश्वर और उसका वचन एक है, मैं और मेरा वचन एक है, आप और आपका वचन एक है। फिर अपने विचारों का सहारा मत लें, उसके विचारों को प्रयोग करें, तब आप परमेश्वर का एक भाग होते हैं, क्योंकि उसका वचन और आप एक बनते हैं, समझे, तब आप राज्य में है। अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी चीज को ऐसे बताया जैसे हालांकि यह नहीं थी, हाँ जैसे मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांत, वो आज वही चीज को करता है। फिर ऐसे राज्य में होना, मैं बंद करने जा रहा हूँ, मैं बस इनमें से कुछ लिखी बातों को छोड़कर बंद कर दूंगा। देखा, यह है ऐसे राज्य में होना क्या होता है। अब इन सबको ताड़ना देना है, लेकिन आदर से और सम्मान में और सच्चाई से, जिसे परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे आदेश दिया गया था, उस झुंड को देखने के लिए कि उसने मुझे वहाँ पर बैठाया है, इसके प्रति सम्मानजनक होने के लिए, इसके साथ बने रहने के लिए, चाहे जो कुछ भी आने दो, केवल इसे दाएं और बाएं हिलाकर और यहाँ इस वचन के साथ बने रहना है, यह आदेश दिया गया है। फिर यदि हम एक राज्य को ग्रहण करते हैं, भाई ब्रैनम, ये सभी अन्य लोग कहते हैं, आप कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं? कहा, किसी से नहीं, आप क्या हैं? क्योंकि हम एक राज्य में हैं। ठीक है, आप इसमें कहाँ मिलते हैं? आप कहाँ पर जाते हैं? हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, जो ऊपर हमारे राजा की उपस्थिति में उठाए गए हैं। वो राज्य महिमा, अब मैं धार्मिक महसूस कर रहा हूँ। परमेश्वर का राज्य जहाँ वे एक साथ मिलते हैं, पवित्र आत्मा सीधा उन्हें राजा की उपस्थिति में ऊपर उठाता है और हम एक साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठते हैं। जब हम मसीह यीशु में बपतिस्मा को लेते हैं, यही वो स्थान है जहाँ से हम संबंध रखते हैं। पत्नी ने मुझसे कहा, जब हम बाजार गए थे, मैंने आपको बताया था, पिछली गर्मियों में हमने देखा कि एक महिला ने एक पोशाक पहनी रखी थी, यह अजीब सी चीज दिखाई दे रही थी, वह अजीब लग रही थी। देखा, उसने कहा, ऐसा क्यों है? हम उन महिलाओं को जानते हैं, उनमें से कुछ यहीं कई कलीसिया की गायक मंडली में गाती हैं। ओ दोस्तों, मैं ये कहने जा रहा हूँ, भले ही ये टेप हो रहा है, हो सके तो उसे किसी तरह से बताऊँ। आप जानते हैं, मैं इसे आदर और सम्मान में कहता हूँ, केवल इसे पकड़े रहें। आपने हजारों हजारों बार उन्हें मंच पर आते देखा है और आपने इसे हर बार वहाँ पर आते देखा है, बिना एक बार चुके। और भाई अर्गम ब्राइट यहाँ संसार के उस भाग के बारे में जानते हैं जो हम यहाँ वहाँ विदेशों में जाते रहते हैं, एक बार भी इसे बिना चुके, लेकिन सच्चाई को बताते हैं। जब मैं इन स्थानों पर जाता हूँ और इन कलीसिया की गायक मंडली के कपड़ों के लिबास को देखता हूँ, वे महिलाएं और पुरुष जो उन गोलगत्था घेरदार कपड़े उस गाउन के साथ वहाँ खड़े रहते हैं और उन्हें उन सद्गुतों की तरह गाते सुनता हूँ, आत्मा की परख के साथ वहाँ पर देखता हूँ। यदि आज मैं सुबह पांच लोगों को सारी दुनिया में से उठाता था जो बुराई से दोषी नहीं रहा था, मैं नहीं जानता कि मैं इसे कहाँ पर पा सकता हूँ। यह एक बयान है, लेकिन यही सच है। परमेश्वर इसे जानता है, मेरे हाथ यहाँ बाइबल पर है, यह सही है। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें कहाँ पाऊंगा। देखो, यदि परमेश्वर ने कहा उन पांच को ले आओ जिन्हें तुम जानते हो, मैं कहूँगा मैं नहीं जानता, मैं कहाँ जाऊँ? ओ परमेश्वर, कैसा सिद्धांत है, कैसी गंदगी है। यही है वो जिसे संसार चाहता है, यही था वो जिसे वो तब चाहता था, यही है वो जिसे वो अब चाहता है, यही है वो जिसे वो अब पाने जा रहा है। पुरुष वहाँ पर खड़ा है जो अपने साथ वाले पुरुष की पत्नी के साथ बाहर जाता है, शराब पीना, धूम्रपान करना और साथ ही इसे ढकने के लिए एक गाउन जो लंबा लिबास है उसको पहनता है। सोचो, और परमेश्वर उस अंजीर के पत्ते के जरिए से देखता है, वो हवा भी उसके हृदय में इतना दोष और गंदगी को लिए खड़ी है। यदि यह पानी में बदल जाता है, एक नाव तैरने लगेगी और वो उस प्रकृति के द्वारा दी गई एक प्रतिभा के साथ गीत गाने के लिए खड़ी होती है और उसकी आवाज को इतना खींचती है जब तक उसका चेहरा लगभग काला नहीं पड़ जाता, किसी दूत की तरह गाने की कोशिश करती है। इसी प्रकार से कुछ तो और ही करती है और उस गाउन के अंदर एक शर्मनाक बद्दी गंदगी होती है और आप पुलपिट पर खड़े हो सकते हैं और इसे बता सकते हैं और वो अपने उन रंगे हुए होठों को ऊपर मोड़ते हुए और इमारत से बाहर निकल जाएगी यह कहते हुए मुझे उस तरह की चीजों को नहीं सुनना है। लेकिन आप किसी दिन अधोलोक में दया के लिए चिल्ला उठेंगे, यह तब बहुत ही देर हो चुकी होगी। आपको इसे ग्रहण करना है जब आपको इसे ग्रहण करने का मौका मिलता है और आप ओह प्रभु। लेकिन कलीसिया को एक राज्य मिलता है कि जब हम स्वर्गीय स्थानों में बैठते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में उठाए जाते हैं, मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठते हैं, यह जानते हुए विश्वास के भरोसे के साथ कि हम अपने अभिषिक्त राजा की उपस्थिति में हैं। ओह वहाँ एक नया आकाश और एक नई धरती को आगे आना है और जो कभी भी फिर से अलग नहीं होगा जब तक अनंत काल रहता है। हम उस नए आकाश और धरती के लिए देख रहे हैं जो यह एक है। आप जो भी चाहते हैं आप इन सब को प्राप्त कर सकते हैं। अपने लिए मैं इस एक को चाहता हूँ। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका अपना लगाव किससे है। यह निर्भर करता है कि आप कौन से पद से जुड़े हुए हैं। आप अपने सांप्रदायिक पद से जुड़े होते हैं, आपको ठीक इसके साथ जाना होता है। यदि आप इस संसार के किसी भी चीजों से जुड़े हुए हैं, कोई राजनीतिक और इसी तरह की चीजें, और उस पर भरोसा करते हैं, आप इसके साथ डूबते जाएंगे। लेकिन मेरी आशाएं यीशु के लहू से कम किसी पर भी नहीं बनी हुई है जो धार्मिकता के साथ है, और वे सारे जो मेरे हृदय के करीब हैं दूर चले जाते हैं और हर एक सेवक मुझसे मुंह मोड़ लेता है और हर एक संस्था मुझे बाहर कर देती है और यहाँ तक मेरे पास जाने के लिए एक स्थान भी नहीं है। वही मेरी सारी आशा और बने रहने का स्थान है, उस चट्टान पर, मसीह पर जो मजबूत चट्टान है मैं खड़ा हूँ। बाकी सारे स्थान धस्ती हुई रेत है। किसी दिन मैं शायद हो सकता है कहीं तो एक कब्र में दफनाया जाऊं, समुद्र के नीचे एक हवाई जहाज में नष्ट हो जाऊं, एक ट्रेन या एक गाड़ी में मारा जाऊं, या जो कुछ भी हो जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए चुना है। लेकिन एक बात यह है, मैं जानता हूं कि मैंने अपने प्राण को उस और शरण स्थान के विश्राम में उसके वचन में लंगर किया है। मुझे विश्वास है ये परमेश्वर का वचन होना चाहिए। परमेश्वर को किसी चीज से संसार का न्याय करना है। यदि वो कलीसिया के द्वारा न्याय करता है, इनमें से वो कौन एक है जिसके द्वारा वो न्याय करेगा? क्योंकि ऐसी कोई एक चीज नहीं है जिसके द्वारा न्याय किया जा सके। तब केवल एक ही चीज है जो बसती है, वो उसका वचन है। यह अनंत है, इसे जोड़ा या निकाला नहीं जा सकता है। मैंने वहाँ अपने प्राण को लंगर किया है, सादगी के साथ अपने हाथों को मेरे बलिदान पर रखते हुए यह स्वीकार करते हुए कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। ओ प्रभु परमेश्वर, उस मसीहा को मुझ पर भेजे और मेरे अस्तित्व को बदल दे जो मैं था, और मुझे अपने खुद के आचरण में बनाए जिस तरह से आप मुझे बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना एक देह को जला सकते हैं, आप एक व्यक्ति को कितना नष्ट कर सकते हैं, आप उनके विरोध में कितना बात कर सकते हैं, या जो भी वो कहता है, किसी दिन वो हमें फिर से खड़ा करेगा। और एक ऐसा राज्य है जिसे हम पाते हैं जो हिलाया नहीं जा सकता है। ओह प्रभु, और याद रखें ये सारी महिमा में बात जिसका अब हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए आनंद ले रहे हैं, ये तो केवल एक झलक है। हालेलुया, यह एक झलक है कि क्या आने वाला है। यह तो केवल आने वाली एक संगीत की रचना का परिचय है। ओह हालेलुया, इस चिल्लाने और प्रशंसा करने और महिमा करने, मेमने को ऊंचा उठाने के बारे में बात करें, एक दिन जब वे दूत पृथ्वी के चारों ओर खड़े हो जाते हैं, पृथ्वी की गोलाई के चारों ओर झुके हुए सर के साथ, और सुनते हैं कि वो छोटा सा लहू से धुला हुआ झुंड उन यीशु मसीह के लहू के छुटकारे के गीतों को गाता है। ओ परमेश्वर, मैं उनके साथ शामिल होना चाहता हूँ। मुझे अब उसके साथ मेरे स्थान को लेने दो, मुझे अपना आश्वासन करने दो। यीशु मेरा है, मैं उसे और उसके वचन को ले लूंगा। हाँ, बंद करते हुए मैं क्रिसमस के लिए इस छोटी सी कहानी को कहना चाहता हूँ ताकि वे बच्चे इसे समझ सकें। और यदि मैंने आपको बहुत लंबे समय तक रोके रखने से खेदित किया है, कल एक छोटी सी महिला भाई ब्राउन ने लगभग एक घंटे का प्रचार किया। उस अभिषिक्त व्यक्ति का बहुत ही अद्भुत उपदेश था। महिला ने कहा उसने बस ऐसे ही उन्हें लंबे समय तक रोके रखा। पौलुस ने सारी रात प्रचार किया था। वे वहाँ पर बैठे हुए थे इतना तक कि उन्हें बहुत नींद आने लगी और शायद घंटों के बाद घंटों बैठने पर और एक साथी नीचे गिर गया और अपने आप मर गया और पौलुस ने खुद को उसके ऊपर पसार लिया, कहा चिंता मत करो, बस सही बात पर ध्यान दो। एक बूढ़ा मोची हुआ करता था और मैं सोचता हूँ कि वो जर्मनी में था जहाँ वो उनके जूते बनाता था और एक दिन जब अपने खाली समय पर वो अक्सर बाइबल को लेता और इसे पढ़ता था, वह वचन के संदर्भ और पाठ को पढ़ता था और वह वास्तव में बहुत ही सच्चा हो गया। उसने कहा तुम जानते हो, उसने कहा मैं जब इस बार क्रिसमस नजदीक आता है मैं किसी भी क्रिसमस के पेड़ को उजागर नहीं करूंगा, लेकिन उसने कहा तुम जानते हो क्या, उसने कहा मैं एक बड़ा रात्रि का भोज करने जा रहा हूं और मैं अपने लिए खाना पकाऊंगा, अपने मेमने को भूनूंगा और मैं अपनी क्रैनबेरी और अपने सारे मसालों और इत्यादि को लेकर आऊंगा, और वह केवल खुद ही था और उसने कहा मैं इसे टेबल पर तैयार करके रखूंगा और मैं अपनी तरफ से यीशु को मेरे सामने बैठने के लिए आमंत्रित करूंगा। मैं परमेश्वर के मसीहा को जानना चाहता हूं और उसके लिए जो भी आदर में कर सकता हूं। उसने कहा मैं ये वो सब करूंगा और फिर मेज पर बैठकर और मैं आशीष को मांगूंगा और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं जो भी वो मुझे देता है और फिर मैं कहूंगा हे प्रभु यीशु, क्या आप यहां सामने आकर और यहां बैठना नहीं चाहेंगे, बस मेरे साथ क्रिसमस के रात्रि के भोज के लिए। सादगी में परमेश्वर हमें सुनता है जो सच्चाई में है। और उस बूढ़े मोची ने अपना सारा पैसा बचाकर रखा ताकि वह इस तरह के रात्रि भोज को कर सके, आप जानते हैं, और राजाओं के राजा को आमंत्रित किया और उसने इसे नीचे रखा और उसने इसे पकाया और वह इसे एक टेबल पर तैयार करके रख दिया और उसने खुद को बहुत ही अच्छी तरह से साफ किया और खुद को तैयार किया और अपने बालों को कंघी से संवारा और वह नीचे टेबल पर बैठ गया और यीशु के लिए कुर्सी को तैयार करके रखा और कुछ और कुर्सियां चारों ओर रखी हुई थी, यह शायद चेलों के लिए हो सकती है, उसने कहा यदि शायद वे अंदर आ जाए तो। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर झुकाया और उसने आशीष को मांगा और भोजन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया और उसने कहा अब यीशु क्या आप आकर और मेरे साथ इस क्रिसमस की रात्रि को भोज नहीं करना चाहेंगे, और उसने खाना आरंभ किया और कुर्सी की ओर देखने लगा, कोई नहीं आया। उसने थोड़ा कुछ और खाया और उसने कहा प्रभु परमेश्वर, मैंने आपको अपने घर में आमंत्रित किया है, क्या आप आकर और मेरे साथ नहीं रहना चाहेंगे, और उसने वहाँ आगे जाकर और कुछ तो खाने के लिए लिया और किसी ने तो दरवाजे पर दस्तक दी और वो दरवाजे पर गया, वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, कंधे झुके हुए थे, फटे पुराने कपड़े। उसने कहा कृपालु श्रीमान, महोदय मुझे ठंड लग रही है, क्या आप मुझे गर्म होने देंगे, और उसने कहा अंदर आ जाइए, और वह अंदर आया और उस भोजन की खुशबू की सुगंध आने लगी, उसके मुंह में एक तरह से पानी आ गया, वह पीछे मुड़ा, कहा क्या आप बैठ जाएंगे, कहा मैं अतिथि की अपेक्षा कर रहा हूं, लेकिन क्या आप बैठ जाएंगे और मेरे साथ खाएंगे जब तक अतिथि नहीं आ जाता है, उसने कहा धन्यवाद मुझे खुशी होगी, और वो बैठ गया और उन्होंने रात्रि का भोजन किया। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे धन्यवाद दिया, उठकर और चला गया, और वो मोची पीछे मुड़ा, उसने कहा प्रभु परमेश्वर आपने मुझे क्यों निराश किया, कहा मैंने सब कुछ पूरी तरह से तैयार करके रखा था, मैंने वो सब किया जो मैं करने के लिए जानता था, यदि आप बस ऐसा करें, मैंने वो सब किया है जो मैं करने के लिए जानता था और सोचा था कि आप आकर मेरे साथ भोजन करेंगे, और वो रोने लगा और दौड़कर बिस्तर के पास गया और गिर पड़ा और वो वहाँ बिस्तर पर पड़ा हुआ था, मैंने वो सब कुछ किया जो मैंने सोचा था कि यह सही था प्रभु, और आप मेरे साथ भोजन करने के लिए क्यों नहीं आए। और एक आवाज उसके पास आई और उसने वचन को याद किया, जैसा कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे लोगों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। हाँ इरेनियस, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये संत मार्टिन था, एक क्रिसमस के ठंड के दिन से पहले एक गरीब बूढ़ा भिखारी सड़क पर पड़ा हुआ था, जमा हुआ लोग जो माननीय थे वहाँ से गुजर सकते थे और बस उस बूढ़े भिखारी को देखते तो ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वह तो बस एक भिखारी है, उसे वहीं पड़े रहने दो। और मार्टिन खड़ा हुआ और देखा और देखा कि क्या उसमें से कुछ लोग जो उसकी सहायता कर सकते हैं क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अंत में मार्टिन खुद नहीं, वह परमेश्वर पर विश्वास करता था, लेकिन वो एक सैनिक पुरुष था, उसके पास केवल एक कोट था। उसने कहा, यदि वो बूढ़ा आदमी इसी तरह से पड़ा रहता है तो वो जमकर मर जाएगा। तो उसने अपनी तलवार को लिया और उसके कोट को फाड़कर दो भाग किया। वहाँ जाकर उसने बूढ़े भिखारी को लपेटा और कहा, शांति से सो जाओ मेरे भाई, और चला गया। और उस रात सैनिकों के कमरे में उसके जूतों को चमकाने के बाद और वहाँ लेट गया, उसे नींद आ गई और कुछ आवाज ने उसे जगा दिया। उसने अपने सामने उसे खड़ा देखा और वहाँ उस पुराने कोट के टुकड़े में यीशु लपटा हुआ खड़ा था जिसे उसने भिखारी को लपेटा था। तब इन विषयों में मैं क्या कर सकता हूँ, इनके साथ मुझे इन बातों में क्या करना चाहिए जिससे कि मैं जान जाऊँ यह सही है। इन चीजों को प्रमाणित किया गया है और साबित किया गया है कि वे सही हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? कलीसिया को ढाको, एक संस्था से नहीं या एक संप्रदाय में, लेकिन उसके वचन के द्वारा, यीशु मसीह के लहू में। इसलिए यीशु ने कहा, तुमने इनके साथ जो किया है तुमने मेरे साथ किया है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, यदि आप आज सुबह यहाँ खड़े थे, प्रभु मैं जानता हूँ कि आप आत्मिक रूप में खड़े हैं, लेकिन सचमुच यदि आप यहाँ खड़े होते थे, मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं अपने विषय को जरा भी बदलता। मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने बस उन्हीं बातों को कहा है, और विश्वास करता हूँ स्वर्गीय पिता, ये लोग जो अपने स्वाभाविक भोजन को खाए बिना यहाँ बैठे हुए हैं और कर्कश थकी हुई आवाज को सुन रहे हैं, लेकिन यदि आप यहाँ पर खड़े होते थे तो वे अब और खड़े भी नहीं हो पाते थे, क्योंकि वे विश्वास करते हैं कि आप यहाँ पर हैं, क्योंकि यह आपका वचन है। यह दिखाता है कि वे आपसे प्रेम करते हैं। हम बहुत आभारी हैं इस क्रिसमस पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, जो हमें निर्देशित करता है और केवल हमें दिखाता है कि क्रिसमस क्या है। जब हम इस संसार को टूटकर बिखरते हुए देखते हैं, इसके सिद्धांत टूट रहे हैं, लेकिन हम बहुत ही खुश हैं, हम बहुत ही आभारी हैं कि हमारे पास एक राज्य है और हमारे पास एक राजा है और इसे हिलाया नहीं जा सकता है। और जब वहाँ कोई भी संसार और नहीं होगा, जब कोई भी और राजनीतिक नहीं होगी, जब कोई भी और राष्ट्र नहीं होगा, तब परमेश्वर उसके राज्य को स्थापित करेगा और धर्मी जन उसके साथ राज्य करेंगे। जिन्होंने उसके साथ दुख उठाया वे अब और दुखी नहीं होंगे। इस क्रिसमस के समय पर प्रभु अभिषिक्त मसीहा के महत्व को याद रखने में हमारी सहायता करें, समझने में हमारी मदद करें, हमारी इस सभा को आशीष देना, उनके साथ रहना हमारे पिता, और उन्हें पवित्र आत्मा में धार्मिकता और शांति देना। हमारे पास्टर को आशीष देना। प्रभु हम उनसे प्रेम करते हैं, यह साहसी सेवक जो केवल वफादारी से खड़ा रहता है। और एक रात वो बोल रहे थे, कहा, मैं यहाँ लगभग 60 वर्ष का हूँ, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन याद करें, वो उसे याद कर सके। प्रभु उसे कोई भी यहाँ से नहीं ले जा सकता है जब तक आप तैयार न हो। यदि आप आने में देरी करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ वो जीवित रहे, अपने सभी बच्चों को विवाहित देखे और उनके पास खुद के घर हो। उसकी बहुमूल्य छोटी पत्नी, आपकी छोटी सी दासी को आशीष देना। हमारे डीकनों और हमारे खजांचियों को आशीष दे। और परमेश्वर, मैं क्रिसमस के लिए आभारी हूँ, इन सभी मेरे दोस्तों के लिए जो उस बर्फ में से होते हुए यात्रा की है और चिकनी सड़कों और बारिश पर से होते हुए आए हैं और अपने सामानों को लेकर और सैकड़ों सैकड़ों मील दूर से आते हैं। परमेश्वर, मुझे नहीं पता अब और क्या कहना है। मैं भरोसा करता हूँ कि आप इस बाकी का प्रकट करेंगे जो मेरे हृदय में है। और होने पाए मैं हमेशा ही इस राज्य के प्रति विश्वास योग्य रहूं जिसे आपने हमारे अंदर रखा है। होने पाए मैं कभी समझौता नहीं कर सकता, ना ही दाएं या बाएं। मुझे अच्छी तरह याद है जब आपने मुझे बताया था न दाएं हाथ को जाना या न बाएं हाथ को, तो तुम्हारे रास्ते सफल होंगे, तब तुम्हारे पास अच्छी सफलता होगी। हो सकता है दुनिया के आंखों में नहीं हो और मुझे परवाह नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं प्रभु, आपकी इच्छा हमारे लिए क्या है, आपकी इच्छा हमारी इच्छा है। ओ, आपकी छोटी से छोटी इच्छा हमारे लिए एक जीवन से बंधी हुई आज्ञा है। प्रभु, हम आपके कलीसिया के रूप में खड़े हैं। अब हमें क्षमा करना जो इस वर्ष के दौरान हमने किया है, जो गलत है और जहां हम बहुत से स्थानों में चूके हैं, और हमें शक्ति दे प्रभु। और होने पाए हम क्रिसमस के उत्सव के इस समय पर हम परमेश्वर के अभिषिक्त मसीहा के लिए अपने हृदय को खोल दें। होने पाए वो हमारे जीवन में आकर और हमें अभिषेक करे और इसकी इच्छा को जिए और उसके राज्य को लाएं हमारे जीवन में होकर गुजरने के लिए। हमें अच्छी तरह से स्वस्थ रखें। इस मेरे पुराने साहसी मित्र को आशीष देना जो मेरे पास बैठे हुए हैं, भाई अर्गन ब्राइट। हे परमेश्वर, आप किस तरह से उसके साथ रहे थे और उसने किस तरह से बहुत सी बार उसके हृदय को स्थिर किया था और कुचला था, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं कि वह अनंत जीवन के साथ अंकुरित हुआ है। इसकी छोटी पत्नी को आशीष दे। मैं बर्ड और फ्रेड और अपने लिए सोचता हूँ, हे परमेश्वर, कैसी हमारे पास ये महान संगति है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें एक साथ आशीष देंगे, हमारी छोटी सी कलीसिया को आशीष देना, इन सारे बहुमूल्य लोगों को। और किसी दिन प्रभु, जबकि हम बहुत ही हम चाहते हैं कि हमारी आंखें दुनिया की चीजों से इतनी पवित्र हो कि हम केवल परमेश्वर और उसके राज्य को देख सकें, कि किसी दिन हम मसीह के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे निर्दोष, एक शुद्ध कुंवारी के रूप में, उस महान कलीसिया का एक हिस्सा है जो उसके सामने आना है। और फिर हम उस आने वाले समय की प्रतीक्षा करेंगे जहां आप अपने राज्य को पृथ्वी पर तैयार करेंगे। प्रत्यक्ष घरों के साथ प्रत्यक्ष लोग होंगे और ना ही वे बोएं और इससे कोई और दूसरा खाए, लेकिन वे अनंतता के लिए जीते रहेंगे। तब तक के लिए हम एक प्रकाश बने जिसे एक ऊंचाई पर रखा जाए, एक दीपक जो उन सबको प्रकाश देता है जो हमारे चारों ओर है। एक धार्मिक जीवन के द्वारा मसीह के लहू से पवित्र किया गया, इसे प्रदान करे पिता, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। और हे प्रभु, इन रुमालों पर इन बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए, और हमने उन पर हाथों को रखा है, अपने आप को उनके साथ जोड़ते हुए मैं इन रुमालों पर मेरे हाथों को रखता हूँ परमेश्वर की ओर, मेरी प्रार्थना को साथ जोड़ते हुए और इन रुमालों और लोगों के साथ परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ कि आप इन लोगों में से हरेक को चंगा करें जिनका ये रुमाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। होने पाए आने वाले वर्ष के दौरान उनके पास अच्छी सेहत और शक्ति हो पिता, परमेश्वर के आदर और महिमा के लिए हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया। और मेरा उद्धार खरीदा कलवरी के पेड़ पर। अब जब हम इसे फिर से गाते हैं तो हम अपने आसपास के व्यक्ति के साथ हाथ को मिलाएं, केवल कहते रहें, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे भाई अर्गम ब्राइट यह है। अब हमारे हाथों को उसकी ओर उठाएं। मैं उससे प्रेम करता हूं, अब बहुत जोर से, मैं उससे प्रेम करता हूं, इसी तरह, क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया और मेरा उद्धार खरीदा कलवरी के पेड़ पर। और अब हम शब्दों को हम सभी इसे एक साथ कहेंगे, हमें एक राज्य मिला है जिसे कभी हिलाया नहीं जा सकता है। आमीन। अब हम खड़े हो जाएं, अब हमारे हाथों को उठाएं और हमारे हृदय को परमेश्वर के लिए उठाएं, आभार के साथ, वास्तव में हमारे पूरे हृदय से। मैं उससे प्रेम करता हूं और केवल इस क्रिसमस के समय पर उसके लिए इसे व्यक्त करें। मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं, क्योंकि और मेरा उद्धार खरीदा कलवरी के पेड़ पर। इसके तुरंत बाद ही अब एक बपतिस्मा की सभा को किया जाएगा और आप जिनको जाना है, हम आभारी हैं कि आप यहाँ पर थे और आप हमेशा ही उस राज्य में बने रहे जिसे कभी हिलाया नहीं जा सकता है। जबकि हम अपने सिरों को कुछ समय की प्रार्थना के लिए झुकाते हैं, मैं अपने बहुमूल्य भाई अर्गम ब्राइट से कहूंगा यदि वे यहाँ पर आ जाएं और कुछ शब्द की प्रार्थना से इस सभा को समाप्त करें।